एक है कोई आदमी अपनी आदत बना ले कि दिल चाहे या ना चाहे कोई नाम है या नहीं वो सजदा करता है उसको दुआ करता है उसकी पुकार से मांग करते हैं वो कहते हैं कि इस तरह का कोई सजदा हदीस में नहीं आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुकामात पर बेइख्तियार सजदा फरमाया है या उसकी ये तामीन करते हैं कि इससे मुराद नमाज है कि आपने दो रकअतें पढ़ी और या इससे मुराद ये है जो भी इख्तियार शुक्र की कैफियत गालिब हुई और आपने उसे सजदा फरमा दिया तो ये अक्की है कि किसी इंसान पर ऐसी कैफियत गालिब आ जाए तो वो इस सजदे को भी नमाज से मुत्तसिल बात मना करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वक्त आ जाएगा जब ये चीजें ऐसे हो जाएंगी कि लोग इस सजदे को जरूरी समझने लगेंगे मसलन हदीस में ये आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले जिन सूरतों की तिलावत का इरशाद फरमाते थे उनमें सूरह सजदा भी अब वाले सारी जिंदगी एक नस्ल सूरह सजदा पढ़ती है और वो रात को सजदा करके औलाद जो है अगर ये समझने लगे कि इशा की नमाज के बाद एक सजदा करना ही जरूरी होता है जब बात किया करते थे तो ये दीन में तहरीक की इकरार मिल जाए इसलिए फुकहा ने बड़ी शिद्दत से उन तमाम रास्तों को बंद किया है जिससे किसी को शुबा भी गुजर सके कि ये दीन वजह यही है वो कहते हैं कि अगर दीन में इस तरह के दरवाजे खोल दिए जाएं तो असल दीन से कुछ हो जाएगा तहरीक हो जाएगी और दीन में तब्दीली आ जाएगी हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह आए और उनके साहबजादगान का नजदीक साहब रहमतुल्लाह उनका मुकादिर साहब रहमतुल्लाह वगैरह वगैरह इन हजरात ने कुरान पाक का तर्जुमा कर दिया बिल्कुल ठीक ठाक एक हजार की राह पे चले लोगों को समझा लेकिन जिस जमाने में बड़े सगीर में तर्जुमा हो रहा था अरबों में जाम अजहर में इनमें शदीद बहस छिड़ी हुई थी कि तर्जुमा करना जायज भी है या नाजायज है और जो लोग नाजायज से कह रहे थे उनके दलाइल में से एक दलील ऐसी थी जिसको उलमा ने गौर किया वो कहते थे कि तुम तर्जुमे की आज इजाजत दे रहे हो बजाय इसके कि लोग पढ़ें अरबी और असल चीज को समझें आज ये तर्जुमा हो जाएगा आप फ्रांसीसी में इजाजत दे रहे हैं कल फ्रांसीसी से लोग फिर तर्जुमा करेंगे इंग्लिश में और इंग्लिश किसी और जुबान में तो असल वतन कुछ का कुछ होता है असल बात अल्लाह ने कुछ कही फ्रांसीसी जुबान में कुछ और हो जाएगी फिर उससे इंग्लिश तर्जुमा हो जाएगा तो फिर जो जवाब देने वाले थे उन्होंने कहा कि हम इसका इजाला इस तरह करते हैं कि हम ये कहते हैं कि मतन टेक्स्ट के अलावा सिर्फ कुरान पाक का तर्जुमाना चाहता है सिर्फ इंग्लिश में छाप दिया जाए सिर्फ उर्दू में किसी भी जुबान में ये जायज नहीं बल्कि इसके साथ असल मतन भी छापा जाए और दूसरी बात यह है कि एक जुबान से दूसरी जुबान पर तर्जुमा करना ये मना कर दिया जाए कि कहा जाए कि गुनाह की बात है डायरेक्ट तुम कुरान करीम का तर्जुमा बराह रास्त किसी भी जुबान में करो ये जायज है तो खैर उनकी बैठ जैसी भी थी लेकिन उन लोगों को डर बुनियादी तौर पर यही था कि आज अगर इस किताब से तर्जुमे की इजाजत दे दें और लोगों ने अरबी ना पढ़ी हुई तो असल टेक्स्ट बदल जाएगा कुछ का कुछ लोग कर लेंगे तर्जुमा दर तर्जुमा उसकी चीज पर चली जाएगी तो इसीलिए जुमे के दिन का मुतलकन रोजा जिन फुकहा ने मना किया तो इसी वजह से वो कहते थे जुमे के दिन की तुम इजाजत दे दो और फिर होते होते लोग जुमे को खास कर लेंगे कि इस दिन रोजा रखना चाहिए ये बड़े सवाब की चीज है कि लोगों में रिवायतें शुरू हो जाएंगी इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा भी अगर तुम जुमे को रोजा रखना चाहे जुमेरात को भी साथ मिला किया करे दो दिन रोजा रखा करे क्योंकि दो रोजे जो है वक्त रखने मुश्किल हो जाएंगे और मुश्किल नहीं भी होंगे कोई भी रखेगा तो उन्हें पता होगा कि दो रोजे रखने हैं एक रोजे की कोई खसूसियत नहीं है स्पेशलिटी नहीं है कि उसको रखा जाए और शरीयत ने उससे कोई भी अजर देने का वादा किया है तो कुछ भी है बहरहाल जुमे के दिन के मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह के यहाँ रोशन पेश किया जाएगा तो इसकी वजह यह कि उसके में आमाल नेकी के ज्यादा होते हैं अब रहमतुल्लाह अलैहि ने अगली हदीस जो जिक्र की ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि अहयाउल उलूम ने जिक्र की और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह के अहादीस के मुतालिक असली बात याद रखनी चाहिए कि हदीस के मामले में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का कोई एतबार ऐसी ऐसी रिवायात लाते हैं जिनका सिरे से कोई तذکرہ कोई वजूद ही इसी के लिए बैनर ने जहां गजाली पर तंकीद की है उसमें से एक चीज यह है कि वो कहते हैं कि ऐसी वाही तबाही दीवार के नकल करते हैं जिनका हदीस की किताबों में कोई सिरे से जिक्र मिलता ही इमाम गजाली ने अल्लाह के साथ यह हुआ कि अल्लाह ताला ने गैर मामूली जहानत जिन लोगों को दी थी उनमें से एक थे इसके साथ उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद उस वक्त आलम इस्लाम में मुस्तनफरिया जो मदरसा था वो इसी तरह उसकी हैसियत थी जैसे आजकल के जमाने में गुजार अहमदर की बात करे या आजकल के जमाने में वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की बात करे या और किसी यूनिवर्सिटी की बात करे वहां पे इमाम गजाली रहमतुल्लाह को बिल्कुल जवानी की हालत में उन्हीं दिनों में उन्हीं उनकी जिंदगी के उन बेहतरीन सालों में हुकूमत ने खुद मुदर्रिस मुकर्रर किया पर बहुत बड़ा इजाज था किसी इंसान के लिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह जब निकलते थे तो उनका जो जुब्बा था उसको अगर जमीन पे ना लग जाए उठाने के लिए नौकर और उनके तालिबे उनके पीछे चलते इमाम गजाली रहमतुल्लाह की जिंदगी को ऐसे साथ थे कि उनके हाथों ने उनके जूतों को नहीं छुआ हर वक्त उनकी खिदमत होती रहती थी इतना अल्लाह ने दिया था और इसकी वजह से बहुत मौजूद थे बहुत ज्यादा एजाज था उनकी दिल क्या था फलसफा था मंतिक थी हिसाब था जमीन की पैमाइश सिस्टम की जितनी चीजें हिसाब से उनका अल्लिक थी ये सारी चीजें इमाम गजाली रहमतुल्लाह को यद पूजा इनमें हासिल था और लोग ये समझते थे कि इल्म जो है वो यही जिस जमाने में अरबों में अभी इल्म की इतनी ज्यादा रविश नहीं चली थी हिंदुस्तान इल्म के मामले में उस जमाने में भी होता जब आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ दिल्ली में तुगलक के जमाने में 1000 मदरसे 1000 मदरसे छोटे और बड़े सब मिला के और तुगलक का हाल अपना यह था कि हिदायत से जुबानिया की चारों जिले हालांकि जिन्होंने हिदायत पढ़ी है वो जानते हैं कि तीसरी और चौथी जिस बात पर इतनी मुश्किल है कि उसे समझना और उसे याद रखना हर बच्चे का काम नहीं लेकिन उसे हिदायत जुबानिया की कितनी चीजें थी जिससे जुबानिया की ये बादशाह वक्त का हाल था और दिल्ली के मुतल्लिक मौलकीन ने कहा है कि उस वक्त ये हाल था कि घर में मामूली औरतें जो किसी के घर मुलाजमा के तौर पर काम करने आती थी वो भी पूरी सिपाही को जानती यानी उनका दर्जा कहता था कि उनसे छोटे मोटे मसाले दरियाफ्त किए जा सकते थे हत्ता के ये डब्ल्यू हिंटर जो है जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्होंने बंगाल के मुतल्लिक लिखा है कि हिंदुस्तान के एक सूबे बंगाल में 80,000 मदरसे ये खुद उन्होंने लिखा है और ये दरियाफ्त और चीजें हमने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के नाम से है लंदन में पढ़ी और इसी तरह मुसलसल लिखते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी तालीम थी इतना हिस्सा इसका ये था इसका ये था और फिर होते होते वो सब चीजें बर्बाद हो गई वो सब चीजें तबाह की गई जान के भी तबाह की गई हत्ता के पंजाब के अंदर लिखा है जिस पंजाब में अब भी रेट ऑफ एजुकेशन शायद 20-25% जितना भी आप समझते होंगे होगा जितना भी लेकिन अंग्रेजों ने कहा है कि हिंदुस्तान में पंजाब जो था इसमें 95% लोग पढ़े और ये उस दौर के बाद की बात है जब पंजाब में जमाने में लोग यूनानी जुबान बोलते थे क्योंकि सिकंदर आजम जब आया था तो उसकी बहुत ध्यान रह गई थी तो उसकी वजह से जुबान तब्दील हो गई थी ये बखैर कबले मसीह के वाकयात में से है लेकिन पंजाब में इल्म इतना ज्यादा था कि लाहौर का ये जो कॉलेज है एचिसन इसके प्रिंसिपल और गवर्नर को और एक और साथ से उन्हें मुकर्रर किया गया इस बात पर कि पंजाब में रेट ऑफ एजुकेशन कैसे कम किया जाए पंजाब को तालीम से कैसे महरूम किया जाए तो उन्होंने लंबी बहस को खुलासा ये कि उन्होंने कहा कि बस आप इतना कर दें कि जितनी भी गांव में फसल होती है कुछ जो निकलता है जमीनों का इससे तनख्वाह अदा की जाती है पटवारी की और इससे तनख्वाह देते हैं मौलवी साहब को मस्जिद में जो इमाम पढ़ाता है जो भी मदरसिन पढ़ाते हैं और ये स्कूल जो होता है इसकी तनख्वाह दी जाती है ये तीनों तनख्वाहें आप काट के इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक कर दें कि तहकील से आकर ये तनख्वाह वसूल क्या करें ये तरमीम एक कर और इन्होंने से एक चीज उन्होंने ये भी कही थी जो गवर्नमेंट ने कहा थी रास्ते कच्चे थे बारिशें पतली होती थी अब भी होती है गर्मी उस वक्त भी थी अब भी तो गांव में उन्होंने लिखा एक रिक्वायरमेंट किया उनका 6 महीने के अंदर अंदर तालीम का معیار गिनना शुरू हो गए गवर्नमेंट को पुलिस बताता है हुकूमत बरतानिया को उन्होंने कर दी और नतीजा ये निकला कि गांव की जो फसल थी उससे इन तीनों को हिस्सा मिलेगी मामू को तनखा लेने जाते तनखा मिलती है तो और भी आसानी थी कहां ये कि गंदम जवार बाजरा अपना चीजें जमा हो फिर उन्हें बेचो फिर मुल्ता के पास रहते हैं डायरेक्ट जगह कहते हैं अब जाने में दो तीन दिन लग जाते थे तहसील है क्वार्टर जो होता था उसके बाद तनखा मिला करती थी तहसील है क्वार्टर अंग्रेजों के जमाने में मतलब पिंडी में ये फवारा चौक था अब यहां से तनखा लेने आते थे लोग चकवाल से जेलम से मरी से किधर से आते थे एक दो चार दिन आने में लग गए जाने में लग गए सुस्ती हो गई घोड़ों का सफर गधों का सफर बसें तो ये काम प्रोविजन तो नहीं थी तो नतीजा ये महीने में 8-10 छुट्टियां होने लगी हर महीने 8-10 छुट्टियां होती थी तो उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं फौरी तौर पर बच्चों का मयार तालीम गिर गया और फिर होते होते इस तरह पंजाब में तालीम का असर कम किया गया ताकि लोग असल से महरूम हों और जितना शऊर तालीम ने पैदा किया ये शऊर ना आए क्योंकि अगर फौज में वही शऊर आ जाए लड़ने वाले में जो एक पढ़े लिखे में होता है लड़े कौन जान क्यों दे वो क्यों किसी को मारे वो भी अगर आगे से पहल शुरू कर दे कि साहब मैं क्यों हमला करूं तो उसमें और अब जो अक्सर इनकार करता है कि क्यों हमला करूं इन दोनों में फिर फर्क क्या रह जाता तो इसलिए अंग्रेज बड़ी हिम्मत के साथ काम करता था हजरत अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह से अंग्रेजों की पर लिखा गया कि कब जाएंगे कब जान मिलेगी तो उसने फरमाया बहुत दाना और हकीम लोग हैं बहुत गहरी सोच के बाद ये लोग काम करते हैं इसकी इतनी आसानी से अब जाने वाले नहीं तो हुआ ये कि तालीम का मयार हमेशा बुलंद रहा और तालीम का ये मयार उस वक्त अरबों में भी नहीं था नतीजा उसका ये निकलता था कि अरब से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए और तालीम को बहुत सी चीजों में यहाँ से हासिल करके जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में उलमा की कदर है और बादशाही निजाम था बादशाहों के पास रहता भी खुला था ऐसे ऐसे उलमा मिल जाएंगे जिनकी कई कई कुश्तों ने कभी नौकरी नहीं की सिवाय इसके कि हुकूमत ने कहा कोई काम ही नहीं है बस बैठो लिखो पढ़ो और पढ़ाओ इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है ना हुकूमत पे तनकीद करना ना इस मामले में आना बस सियासी निजाम से आपका टकराव नहीं होना चाहिए और पढ़ते बढ़ाते रहिए ये चीजें होती थी शाहबुल्लाह रहमतुल्लाह ने इस माहौल को उस वक्त भी देखा था उनके जमाने में बिल्कुल सरदार बातें थी तो उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा आसानी से कर लिया वहां ये बहस चलती रही कि तर्जुमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये सब चीजें असल में ये थी कि किसी भी तरह लोगों को बिदआत से रोका जाए और अहले इल्म की कदर बढ़े तो अरबों में जो मुस्तनसरिया मदरसा था वहां इसका नाम था गजाली रहमतुल्लाह जब पढ़ते पढ़ाते थे इसमें और उन्होंने खूब जब पढ़ा लिया तो उनके दिल में खदिश ये थी कि ये जो चीज है पढ़ रहा हूं ये इल्म नहीं वो जो अल्लाह की मारिफत है उसकी जात और सिफात की वो कोई और मैदान है तो यकायक उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और बगदाद से निकल गए और दमिश्क जाके एक मनारा है अभी भी वो कायम है गालिबन 10 साल तक गजाली को कोई काम नहीं था बस ऊपर चले जाते थे और उस मनारे में तन्हा बैठे रहते फिर बैत अल मक़द्दस को चले गए वहां उन्होंने एक शेख से बैठ की जिक्र अज़कार करते रहे अल्लाह अल्लाह करते रहे और 10 साल तक उनका यह हाल था कि फजर से ज़ोहर तक बैठे रहते थे फिर नमाज पढ़ते थे फिर चले जाते थे और उस मीनारे में हिंदुआ जिंदगी होती थी तो उन्होंने अपना ये जो दौर गुजारा फिर उसके बाद में एहसास हुआ कि अच्छा इल्म अल्लाह की मार्फत ये है फिर वो आए दोबारा बगदाद में और फिर उन्होंने बहुत कुछ लिखा आयाउलूम लिखी कीमियाए सआदत लिखी अल-इक्तिसाद लिखी और बहुत किताबें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखी लेकिन मुहद्दिसीन का गलबा था उन सारे दिया आज भी इस्लाम जो मुनकसिम हुआ है उसमें एक तकसीम बहुत ही तकसीमात है मतलब जो मैं आपके लिए एक तौर पर कैसे मुनकसिम हुआ कि स्पेन की अलग हुकूमत बन गई और बगदाद की अलग हुकूमत बन गई मसलन इस तरह की तकसीम हुआ कि सहाबा ने इस्लाम का दौर हुआ कि ताबीन का तबा ताबीन का कैसे तकसीम हुआ हिंदुस्तान की हुकूमत एक थी जिसको खिलाफत के लिए सनद आती थी बगदाद से बगदाद और अपनी हुकूमत थी अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत بہت سی تقسیمات ہیں ان میں سے ایک تقسیم ہندوستان کی یہ ہوئی کہ علمی اعتبار سے وہاں پر غلبہ تھا عربی زبان کی وجہ سے کتاب اور سنت وہ لوگ حدیثوں کو پڑھتے تھے بخاری شریف پڑھتے تھے ترمذی پڑھتے تھے حدیث دوسری کتابیں پڑھتے تھے ان کی اپنی زبان کی ان کے لیے آسان یہاں پر برصغیر میں عربی اس طرح نہیں تھی جس طرح کی تو ذاتی مادری زبان تھی ان پر کوئی سیکھتا نہیں تھا یہاں لوگوں نے سیکھا اور ان سے بھی اچھا سیکھا اور یہ علوم جب سمرقند پہنچے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پر فلسفے کا غلبہ اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ بدھ مت کی تہذیب کے اثرات ابھی باقی تھے اور بدھ مت کی تہذیب بہت بڑی چیز تھی بدھ مت کوئی چھوٹا تہذیب نہیں تھا اللہ عالم کیا تھا اپنے زمانے میں لیکن اگر آپ اس کی تہذیب کو دیکھیں تو اس بدھ مت کے آثار اب تک پائے جاتے ہیں کہ پورا ایشیا کیا آگے چلے جائیں جاپان اور چین اور یہ الجزائر جاپان چین یہ جزیرے جاپان کے ہر طرف بدھ ہر طرف اور پٹنہ ان کا مرکز تھا اور جس اس زمانے میں ان میں بت پرستی نہیں ہندوؤں کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا ہے تو بت پرستی اس وقت آئی ہے اس لیے بنیادی طور پر تمام مذاہب میں توحید تھی سکھوں کے یہاں بھی توحید تھی سکھوں کے یہاں کبھی بھی خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے تھے یہ تو بعد میں جب ٹکراؤ پیدا ہوا ہے اور سکھوں میں وہ ان کا ملیٹنٹ جو آ گیا ایک گرو ان کا اور اس نے کہا ہتھیار اٹھاؤ اور حکومت سے لڑو اور یہ کرو اور پھر اورنگزیب نے ان سے سزا دے دی رحمت اللہ علیہ نے تو اس وقت سے یہ ان میں رجحان پیدا ہوا پھر ہندوؤں کا اثر جب غالب آیا تو پھر انہوں نے اس چیز کو کرنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے بت پرستی شروع کی ورنہ ان میں پہلے بت پرستی نہیں فقہا نے اس بات کو منع لکھا ہے کہ محراب میں قرآن کو لٹکایا ہے کچھ شدید جرم کرا دیتے وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو محراب میں کسی صورت بھی لٹکایا نہیں جا سکتا کہیں ہوگا اسی زمانے میں لوگوں نے عزت اور احترام کی خاطر قرآن کریم میں جس طرح قانوس لگاتے ہیں بہت خوبصورت قرآن لکھ کے اس سے لٹکا دیتے تھے تو فقہا نے اس کی عزت سے مخالفت کی انہوں نے کہا آج تو یہ کام کر رہے ہو نا تو جو پہلی سب میں سجدہ کرے گا اگر کسی کے ذہن میں ذرا بھی یہ بات آ گئی جو قرآن کو سجدہ کر رہا ہے تو اللہ کے علاوہ سے اور چیز کو سجدہ کر رہا ہے یہ شرک ہوتا ہے انہوں نے سختی سے اس بات سے منع کیا اور روکا آپ دیکھیں ان لوگوں کی نگاہ کہاں تک پہنچتی تھی اس لیے کہ حکمران بھی تھے اور اس لیے بھی کہ وہ قاضی بھی تھے اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنی رعایا کی دین اور دنیا دونوں کا تحفظ کرنا ہوتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان میں کوئی ان پڑھ یا جاہل آدمی آ جائے اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان میں آخری لوگوں میں گزرے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے والد ان کے دوست کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ گیا اور میں ان کو سنا رہا تھا ایک کتاب اور ایک مسئلے میں پہنچا اور ان کا اصل مسئلہ یہ ہے پھر میں نے کتاب کو دیکھا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مجھے روک دیا اور انہوں نے مجھ سے فرمایا یہ سب کیا ہے مطلب غلط بات کرتے ہمایوں ان میں بہت بڑا لکھا آدمی تھا ہمایوں جیسا تو اس کا باپ ہی نہیں تھا بابر جیسا بھی تھا بادشاہ لیکن اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بیٹی نے کہا میں تفسیر پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے علماء کو بلایا علماء پڑھاتے رہے لیکن بیٹی کو اطمینان نہیں ہوا اس نے والد سے بار بار شکایت کی کہ نہیں یہ وہ کسی کے متعلق کچھ کسی کے متعلق کچھ بڑی علمی باتیں ہیں لمبی تقریر ہے مختصر پڑھاتے ہیں جو بھی ہوگا لیکن آخر بابر نے خود تفسیر لکھی اپنی بیٹی کے لیے کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ عام آدمی ان کے سامنے عام مولوی صاحب کوئی مفتی کوئی قاضی آسانی سے بات نہیں کر سکتا یہ سب ان کی تعلیم کا معیار تھا تو جب پڑھے لکھے ہوتے تھے دین کی حفاظت کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ پبلک کا دین اور دنیا دونوں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بعض مفتیوں نے اورنگزیب رحمۃ اللہ کو بھی تجویز لکھ کے بھیجی تو اورنگزیب نے یہ کہہ کے واپس کر دی کہ انہوں نے کیا ایسے مفتی جو دنیا کمانے کے پیچھے بڑھ جائیں میں ان کو بالکل پسند نہیں کرتا اور ان کے صحیح جو معاملہ ہے میں ان لوگوں سے اچھا سمجھتا ہوں میں خود سمجھتا ہوں مجھے کب یہ نافذ کرنا ہے قانون اور میری رعایا اس وقت کیا تھا ان میں سے ایک رمق اگر دیکھنی ہو نا تو عباسیوں میں دیکھنی چاہیے عباسیوں میں برمکی بہت زیادہ قریب ہو گئے اور برام کا ایسا خاندان تھا جس خاندان پہ بنو عباس انڈا اعتماد کرتے इनके वजीर बरमकी के बरमकी खानदान के खानदान का नाम है इसका वजीर आजम बरमकी था जो कुछ वो कहते थे वही हुआ करता था और जिस दिन बरमकी ने तजवीज पेश की जिसके हालात बिगड़े हैं बात कहां से चली वो ये कि उन्होंने ये बरमकी जो थे असल में आतिश परस्त ईरान में जब इस्लाम फैला तो ये खानदान पहले से बादशाहों के साथ चला था मुसलमान हो गए तो उनके खून में बादशाहों की खिदमत बादशाहों की मिजाज को समझना ये चीजें तो थी उन्होंने यही चीजें खुलफा के साथ जब करना शुरू की तो खुलफा समझे कि बिल्कुल ठीक है ये खानदान है जो हमारी मदद कर सकता है और हमें बता सकता है कि पब्लिक में अपना रोल कैसे कायम रखा जा सकता है मस्जिद से बरामका बढ़ने शुरू हुए और हारून रशीद का दौर जब आया तो फिर एक मौका ऐसा आया जब उसने कत्ल का हुक्म दे दिया आजम भी कत्ल हुआ कितने ही कत्ल हुए उस जमाने में उसकी बुनियाद की जो चीजें थी उनमें से एक ये थी कि बरामका ने हारून रशीद को कहा कि अगर बैतुल्लाह के लिए हो सके तो आप उसका दरवाजा खोल दें ताकि लोग अंदर को देख सकें जो जाता है उसके दिल में इंतजाब होता है कि दरवाजा खुले अंदर क्या अंदर भी झांक के देख लूं अंदर जाके नमाज पढ़ लूं हर मुसलमान की काज होती है तो आप उसका दरवाजा खोल दें और दरवाजा खोल के उसमें आग जला अंगीठी चलती रहे हर वक्त और खुशबूदार लकड़ियां डाल दिया ताकि बैतुल्लाह में मताफ में तवाफ करने वालों को खुशबू के झोंके दरवाजे से आते उसने सुन तो ली ये बात लेकिन देखो ये हुक्मरानों की बेदार मर्जी कैसी थी गुस्से में भर गया जब तन्हा हुआ तो उसने अपने लोगों को बुलाया और उसने कहा कि ये चाहते हैं कि आपकी परस्ती दोबारा शुरू कर दी जाए और बैतुल्लाह की बजाय आपका तवाफ किया जाए क्योंकि इन्हें अपने बाप दादा का मजहब याद आ रहा है और मुझे इस तरह पट्टी पढ़ा रहे हैं कि वहां पर आग रख दी जाए ताकि अगली नस्ल जो आए इस्लाम में आग के तवाफ को दाखिल कर दे उसने कहा खुदा की कसम मैं इस क्षेत्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता इससे बरामदा से और भी असबाब आते हैं तारीख में लेकिन एक वजह यह भी हो गई कि इस तरह बदमक्तियों का जवाल शुरू हुआ क्योंकि हुक्मरान जानते थे कि किस तरह चीजें आया करती हैं दीन में दाखिल हो जाया करती हैं इसलिए फुकहा ने जो भी मुबारक की हैं उन्होंने महराब में कुरान को लटकाने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा इस तरह का कुरान को सजदा करने लगेंगे ठीक अब यही कैफियत सिखों की पूरी दुनिया में है कि जहां चले जाए ग्रंथ को सजदा करें इनमें भी शिर्क नहीं बुद्धिस्ट थे उनमें भी शिर्क नहीं था इल्म था तौहीद थी खुदा की हर एक मजहब में थी हिंदुओं में भी असल में तौहीद थी अभी हिंदुओं में ऐसे हैं जिनके जिनमें तौहीद थी तो ये सब चीजें इसलिए थी कि दीन को किसी तरह बाहर की जो चीजें आ रही हैं उनसे बचाया जाए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह को आखिरी उम्र में पहुंच कर ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है अब ये दीन की तकसीम जो हम अर्ज कर रहे हैं ना वो इस तरह हुई कि इन इलाकों में बुद्धिस्ट ज्यादा थे अफगानिस्तान में समरकंद में बल्ख में बुखारा में अब तक के जो बुद्ध तोड़े गए हैं ये इतने बड़े बुद्ध थे कि बुद्धिस्ट समझते थे कि कहीं दुनिया में ऐसे बड़े पुजारी बना के पांच जगह के हज करते थे हिंदू उनमें से एक हज जो था उनका टेक्सला में होता था दूसरा हज चकवाल में होता था तीसरा हज मुल्तान में होता था चौथा उर्फ के हज जो मनाते थे ये वहां पर जाकर मनाते थे अफगानिस्तान में और पांचवा बनारस में हुआ करता था हिंदू साल में पांच मरतबा यहाँ हाजिरी देते थे अहराम बांधते थे सोना चांदी नजर नियाज अपने बुजों को पेश करते थे इसीलिए मुल्तान का बड़ा मुकाम और उधर ये बड़ा मुकाम था फलसफा था यहां ज्यादा तो पठानों ने तुर्कमानों ने इन लोगों ने जो दीन को पढ़ा तो इनके जहन में फलसफा था इल्लत थी बहस थी ये क्यों है ऐसे क्यों है इसके पीछे क्या हिकमत है ये क्या इसके मुकाबले में अरबों में ये नहीं था हदीस में आया है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात कुरान में आया अल्लाह ने कहा बस बात खत्म होगी वो इन लोगों से ना अब तक वाकिफ है ना उस वक्त तक वाकिफ थे तो इसलिए दीन ये जो आया ना इधर से समरकंद से बुखारा से हमारे यहाँ हनफियों में जो ज्यादा चीजें आई हैं इस पर अकल का बलबा ज्यादा है और उधर से जो आया उस पर नकल का बलबा ज्यादा है कि हदीस में ही आ गया लिहाजा ये काम करते हैं ये कह इनके पास हदीस है इन्होंने कहा कि हदीस में तो आया लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया उसकी एक छोटी सी मिसाल आप सुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी चीज पर उसका उसका बयाना देना साई देना पैसे देना ये जायज नहीं है जब तक कि वो चीज मौजूद ना यानी कब्जा आपका पूरा है फिर आप पैसे दे सकते हैं पहले आप पैसे नहीं दे सकते हदीस में साफ मना है अब क्या करें एक आदमी जाता है मतलब बादाम जूता बनवाने वो कहता जी जूता वो कहता 1000 का बना दूंगा ये कहते जी 200 रुपए रख लो और 800 में जूता लूंगा तो दे दूंगा ये दाम है अब वो आदमी जूता बना दे और ये 200 रुपए देने के बाद ना आए कि जो शायद चला जाए उसका तो नुकसान हो गया उससे जूता कौन बेचारे से खरीदेगा और अगर वो 200 रुपए लेके भाग जाए और ये आगे जूता लेने और आदमी ना मिले तो फिर क्या हो इसलिए हर वो मामला हर वो खरीदो फरोख जिसमें धोखे का कुछ भी अंतर पाया जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना कर ये बात हो गई अरब की बात के कायदे से इसीलिए आई मैं हदीस इसी पर फतवा अब भी देते हैं अब वो फतवा क्या कहा सकता है अब तो जमाने में तिजारत आप जानते ही हैं कैसी हो गई कि यहाँ से एक टीटी बनवा दी कितने लाख का इतने करोड़ डॉलर का इतने लाख का माल भेज दो इतने करोड़ रुपए का वो वहां से तेल भेज रहा है शिपमेंट लगी कहते हैं बाकी पैसे जमा कराओगे अब तो तिजारत ऐसे होने लगी ना इसलिए उनके पास कोई इसका अब मखरज नहीं रहा कि मसले को हल कैसे करें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ये फतवा देते रहे और फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जब ईरान आए हैं तो उन्होंने देखा पूरे मुआशरे में बामी एतमाद की बुनियाद पर खरीद और फरोख किसी तरह होती लोग पैसे दे जाते हैं आदमी उनके पैसों का एहतराम करता है चीज बना देता है लोग भी आके चीज खरीद के ले जाते हैं जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने कभी ये जाए इसलिए कि लोगों का तआमुल ये है और लोग एक दूसरे के एतबार करते हैं तो आप देखा आपने वो बजाय हदीस से हटे हैं लेकिन उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मना किया था कि नुकसान ना हो जाए क्या नुकसान नहीं होता सारे शहर वाले इस तरह के अमल करने के आदी हैं लिहाजा ये दुरुस्त है इस तरह काम कर लिया करो कोई हर्ज नहीं है इसमें तो हदीस जब वहां से आती है बगदाद से इराक से हरमैन शरीफ से वो लफ्जों पर अड़ जाते हैं कि लफ्ज ही आया लिहाजा यही करना है ये कहते हैं कि रूह की तो देखो उसमें क्या चीज है आखिर उसको सेंस को समझ के फिर उसके मुताबिक काम किया जाए ये तकसीम हुई बहुत बड़ी तो इमाम बजाली रहमतुल्लाह से उन्होंने ये चीजें पढ़ ली थी मुस्तफा ये चीजें लेकिन जो हदीस ने पढ़ी चाहिए थी नहीं पढ़ी उन्होंने उम्र के फिर आखिरी 2 साल जब बिल्कुल वफात के करीब पहुंच गए थे तो उन्होंने एक आदमी को घर पे रखा और फिर उसे बुखारी शरीफ पढ़ी इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने हदीस में इसलिए पीछे रह गए कि हदीस की तालीम बिल्कुल उम्र के आखिर पे आदमी की और वो भी किसी को घर रख लिया बुढ़ापा हो गया था पढ़ते सुनते रहे इसलिए इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने ये तनकीद की है और इस पर जो हवाशी लिखे गए हैं अहयाउल उलूम पे दीगर किताबों पे कितनी जगह आप देखेंगे कि वो कहते हैं ये हदीस हमें नहीं मिली ये हदीस हमें नहीं मिली जुबैदी ने हाशिए लिखी जुबैदी बिलगराम के थे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी थे बिलगरामी थे और बहुत बड़ा खानदान था यहां से वो हदीस पढ़ने चले गए थे यमन और यमन जाकर जुबैदियों में रह के उन्होंने हदीस पढ़ी फिर वापिस आए फिर वापिस गए और फिर उन्होंने किताबें लिखी हैं और ताजिल रूस की उन्होंने किताब लिखी है लुगत में अरबी लुगत में डिक्शनरी ऐसी लिखी कि हिंदुस्तान की तरजमीन ने जितने लोग पैदा किए हैं उसमें बड़ा मुमताज मुकाम है इनका शाह मिर्जा रहमतुल्लाह के शागिर्द थे आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त उस्मानी खिलाफत ने खत लिखा कि हजरत आप हमारे पास आए और हमें आकर हमें ये अपनी किताब की इजाजत दें कि सनद दें आप हमें थोड़ा सा हिस्सा उसका पढ़ा दें तो जुबैदी रहमतुल्लाह अलैहि खुश हो गए क्यों नहीं गए अलग वजह है लेकिन उस्मानी खुलफा तक मराकिश के और बड़े बड़े दूर के लोग उन्हें खत लिखते थे क्या हमें इजाजत दे दें ये सब चीजें क्या थी इल्म की कदर और दुस्तर थी तो जुबैदी रहमतुल्लाह ने इसकी तफरीज की अयाउल उलूम की अयाउलूम की तफरीज में उन्होंने लिखा कि हदीस नहीं मिली ये हदीस नहीं मिली अब यहाँ से शाह साहब रहमतुल्लाह ने जो हदीस लिखी है अगर ये शाह जिंदा रहमतुल्लाह के हवाले से ये मिली नहीं है हमें लेकिन वो हदीस आए हैं कि हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का जिक्र किया कि ये क्यामत के दिन लाई जाएगी एक ऐसी बूढ़ी औरत की शक्ल में कि जो दुनिया है जिसकी मोहब्बत से अल्लाह ने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है कि क्यामत में लाई जाएगी और इस बुढ़िया के बाल तक के पक गए होंगे सफेद बाल होंगे जो स्याह बालों में मिले हुए होंगे और दुनिया लाई जाएगी और उसकी आंखें बिल्कुल नीली हो जाएंगी और दांत उसके फटे हुए होंगे यानी खुले दांतों वाली और वो निहायत बदशक्ल होगी और लोगों को झांक कर देखेगी और लोगों से पूछा जाएगा कि क्या तुम जानते हो ये क्या है حدیث میں بقول امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے جو الفاظ آئے ہیں شمتا زرقا انیابہا بادیا مشفق خلق ہوا, ایسی عورت لائی جائے گی جو بہت قد شکل, جس کے بال سفید اور سیاہ دونوں ملے ہوں گے, ان کے دانت بری طرح بھدے ہوں گے اور بہت ہی بری شکل میں, اور ان سے بھی پوچھا جائے گا, حضرت سے تو اتنا لکھ کے مطلب میں چھوڑ دیا, اس حدیث کو پورا کر لیتے ہیں کہ پھر دنیا میں سے پوچھا جائے گا, لوگوں سے پوچھا جائے گا دنیا کے متعلق کہ تم کیا کہتے ہو, یہ کیا چیز ہے, تو وہ کہیں گے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کیا ہے یہ بڑھیا اور یہ بدشکل عورت کون ہے. انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کی خاطر تم آپس میں لڑتے تھے, تم آپس میں رشتوں کو توڑتے تھے, تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, اور پھر اس دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا چیخے گی اور یہ کہ میرے رب جو میرے پیچھے چلنے والے تھے میرے پیروکار کہاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس دنیا کے ساتھ ان کو بھی اسی کے ساتھ بھیج دو جو اس کی پرستش کرتے تھے, جو اس کے پیچھے چلتے. دنیا جس چیز کا نام ہے وہ حقیقت میں اللہ سے غفلت کا نام ہے, بس اتنی بات. دنیا ان چیزوں کا نام نہیں ہے جن سے ہم دنیا سمجھے بیٹھے ہیں. معلوم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی تشریح کی ہے, ان کا چیز دنیا از خدا غافل ہو جائے, دنیا کس چیز کا نام ہے, اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے. نئے کماشو نقراؤ فرزند زن, یہ جو کپڑا روٹی کھانا پینا دنیا کے اسباب سامان دیکھتے ہیں اور جو سونا چاندی ہے اور اولاد ہے, دنیا اس چیز کا نام نہیں. دنیا نام ہے اللہ سے غفلت. ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہے, اللہ نے ہر طرح سے اسے نوازا ہے, وہ اپنی نماز پوری کرتا ہے, اپنی زکات ٹھیک دیتا ہے, اس کا اللہ کا تعلق درست ہے, مال میں جو چیزیں اللہ نے اس کا حق رکھی ہیں وہ ادا کرتا ہے, اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہے, اپنے گھر والوں کے حقوق سے غافل نہیں ہے, تو وہ آدمی دنیا میں نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ اس دنیا کو, پیسے کو, سونے چاندی کو اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں اور مشکات میں دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ خیر اس کے بادشاہ آ جائے, تو ایک آدمی نے سوال کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کیا خیر کے بعد بھی شر آتی ہے, تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین کی طرف دیکھنے لگے, سر جھکا لیا اور ہم سمجھے کہ اب آپ پر وہی نازل ہو جائے, پھر آپ نے سر اٹھایا اور خوشی کا گویا کہ اظہار فرمایا اس کے سوال سے کہ اچھا سوال پوچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ لوگ جو اچھے سوال پوچھتے تھے تو ان کو ابھارتے تھے, صحیح طرح جواب دیتے تھے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے, اور جو نہیں جواب ہوتا تھا جس کے لیے یہ ضرورت ہوتی تھی کہ اللہ یہ اس بارے میں وحی نازل کرے, وہاں کبھی فرما دیتے تھے کہ میرے پاس ابھی نہیں اس کا جواب, اللہ تعالیٰ دے گا تو تمہیں بتائیں گے, یا فرما دیتے تھے کہ صبر کرو, یا فرما دیتے تھے کہ اس کا جواب نہیں ہے. الغرض سائل کو مطمئن کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور ان کا طریقہ تھا. تو آپ نے سر جھکایا, سوچتے رہے سوچتے رہے, پھر من اٹھایا اور گویا اس کو اپریشیٹ کیا اس سوال پہ, تم نے اچھا سوال پوچھا ہے, اور آپ نے بتایا کہ دیکھو تم سچ کہتے ہو, خیر کے بعد شر نہیں آتی, لیکن جب انسان اپنے حالات کو بدلتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب مال کو ان ذرائع سے کماتا ہے جن ذرائع کو اللہ نے درست قرار نہیں دیا اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, اس طرح کی حدیث آتی ہے, تو پھر وہ انسان سے ہلاک سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے دنیا جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے, جو چیز اللہ سے غافل کر دینے والی ہے وہ اس کی دنیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ایسے لباس آئے جو ہزاروں دینار میں اس زمانے کے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے, کوئی بھی برا نہیں منایا, بادشاہوں نے لباس بھیجا آپ نے پہن دیا, کوئی برا نہیں منایا. اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے پردے لگا دیے تھے بہت خوبصورت, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا ان پردوں کو ہٹا دو, یہ میری نماز میں پلٹ ڈالتے ہیں, تو رسول ادھر رکھ جاتے ہیں. رضا برابر جو چیز, حالانکہ نبوت کا جو منصب ہے وہ اپنا ہی منصب ہے, وہ جانتے تھے کہ کتنا قلب کیا چیز ہو سکتی ہے, کہ جو زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے احتیاط سے زیادہ کرنی پڑتی ہے, بادشاہوں کا قرب کوئی معمولی چیز ہے, اس لیے وہاں پر دنیا اس کو قرار دے دیا گیا کہ نہیں ایسے پردے نہ لگاؤ جس سے یہ چیزیں ہو جائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور عادت شریفہ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں جب گھر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں آتے تھے, तो मैंने हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को नहलाया धुलाया और तैयार किया और घर में पर्दे लगा दिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने पर्दों को मेरे घर में देखा और वापस तशरीफ ले गए। तो मैं बच्चों को लेकर हाजिर हुई और मैंने कहा क्या हो गया है? तो आपने कहा माली वाली दुनिया, मेरा और दुनिया का क्या काम है फातिमा, माली वाली रकम, मेरा और इतने रंगीन इतने नक्श वाले पर्दे, इन चीजों का क्या काम है? तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खानदान के लिए उस मुकाम की मुनासबत से जरा ऐसी महसूस फौरन फरमा दिया कि ऐसे नहीं करना। तो दुनिया जिस चीज का नाम है वो असल में अल्लाह से गफलत का नाम है। बस अल्लाह ने जिस चीज गाफिल कर दिया है, चाहे वो औलाद है और चाहे उसकी नौकरी है और चाहे उसका पैसा है और चाहे वो उसकी तालीम है और चाहे वो उसकी तदरीक है और चाहे वो कुरान ही है जो अल्लाह से गाफिल करता है, इन सब चीजों को छोड़ देने का हुक्म। कुरान कहते हैं अल्लाह से गाफिल करता है तरावी में उजरत के तय कर लेना कि तुम्हारे यहाँ कुरान करीम सुनाएंगे तो तुम मुझे इतने पैसे दे देना, ये अल्लाह से गफलत का नाम है ना। तो इसलिए छोड़ दे इस चीज को, कुरान करीम पे उजरत कर लेना ये मना लिखा है बहाने हम की बहाने और आप कभी जाए इन अरब ममालिक में जहाँ पर वहाबियत का असर नहीं है, यानी हम्बली ये जो अपने आप को कहते हैं इनका असर नहीं है, तो ऐसे इस्लामी ममालिक भी मिल जाएंगे जहां पर कब्रिस्तान में लोग बैठे हुए होते हैं। सूरत हाल यह है कि गुनाहगार आदमी आता है जुमे में ईद में किसी दिन किसी लोग की कब्र है चले फातिहा पढ़ाए जाके दुआ कर ले तो उसके कंधे पे हाथ रखिएगा और कहेगा कि किसकी कब्र है, कहता है वालिद की इसकी इसकी, तो वो तो अपने आप को गुनाहगार समझता है ना। उसे कहेंगे दो कुरान ले लो, एक कुरान अपने वालिद के लिए ले लो मैंने पढ़ा लाओ। वो कहते जिस इनकार उसे देगा वो कहेगा एक कुरान में तुम्हारे वालिद को बख्शा, अब वो पढ़ा है नहीं पढ़ा क्या किया उसने क्या नहीं किया, लेकिन वो खुश है कि एक वालिद को कुरान पूरा पढ़ा पढ़ाया मिल गया, ये कुरान का बेचना है कि दुनिया। इसलिए बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया से बचे, बाकी जितनी भी चीजें वो चीजें अल्लाह रज़ी अल्लाह ने बहुत अच्छी बात फरमाई, जब पैसे आए बहुत ज्यादा और इतनी दौलत आई इतना माल आया कि मुझे नबी में ढेर लग ईरान फता हुआ और इतनी दौलत कभी भी नहीं आई थी इतना सोना और चांदी। तो हजरत रजी अल्लाह ने तशरीफ लाए अगले दिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह और हजरत अली रजी अल्लाह के साथ, तो हजरत रजी अल्लाह बेख्तियार हो पड़े, इतना हीरे जवाहरात भरी हुई कीमत। तो आपने फरमाया कि अगर ये अच्छी चीज है तो मुझसे ये दो पैसे थे उन्हें क्यों नहीं दिए, और अगर ये फितना और आजमाइश है तो मैं क्या बने। फिर कभी ये दानकार अली इतना कुछ कैसे आ गया ये सब चीज, और फिर तुम्हें इस्लाम देखो एक एक बात से उनकी दानाई और हिकमत बख्ती थी। फरमाने लगे कि इन लोगों को अमानतदार होना देखो मेरे दोस्तों, फौज का इतने अमीन है कि एक सुई के बराबर चीज भी मिली है तो उन्होंने गनीमत में भेज दी, अपने पास कुछ नहीं था। उनके अमानतदार होने की वजह यह है कि आप अमानतदार हैं, अगर आप खयानत करने वाले होते तो आपकी फौज इतनी अच्छी ना होती। बिल्कुल की इसलिए कि बड़ों का असर छोटों का पड़ता है, खानदान का बड़ा जिस चीज का इंतखाब करता है उसका असर नाम हमारा रियाया पर पड़ता है, हुक्मरान जो कुछ करते हैं उसका असर अच्छे हो या बुरे पब्लिक पे जरूर पड़ता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और सुलेमान के मुतल्लिक लिखा है मौजदीन ने इब्ने कसीर ने भी कि सुलेमान जो था उसकी अपनी हुकूमत में से बहुत शौक था, रंगीन मिजाज आदमी था, तो उसके जमाने में लोग आपस में बातें करते थे, पूछते थे कि सुनाओ कितनी जमीन ले ली, सुनाओ कितने मकान बना लिए, कितनी शादियां कर ली, कितनी बांधियां तुम्हारे यहाँ है। और मौलकिन कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह जब दौर आया तो फिर हमने सुना आपस में किसी से कहते थे कि कितना कुरान पढ़ते हो, तहज्जुद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, रात को कितनी बात करते हो, तो हमने कहा ऊपर की हुक्मरानी के तब्दील होने से अवाम पर ये असरात पड़ते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया तो एक बांदी और गुलाम ने आकर से कहने लगा कि अफसोस अमीर मोमिनीन का इंतकाल हो गया। तारीख में आता है कि उसने कहा तुम्हें क्या खबर है, और फिर उसने दो तीन साल पहले ये बात कही थी कि हुक्मरान अच्छे आ गए, उसने कहा आज से दो तीन साल पहले तुमने ये बात कही थी, आज तुम ये बात कर रहे हो इसमें कैसे खबर है। उसने कहा वो जो उस दिन बात कही थी तो मैंने देखा कि मैं अपनी बकरियों को बचाता था भेड़ियों से तो भेड़िया गुजरा और बकरियों को उससे कुछ नहीं कहा तो मैं समझ गया वो बनाने वक्त बदल गया और अब आज शाम को जब मैं वापिस आ रहा था तो एक भेड़िए ने हमला किया और बकरी उठा कर ले गया तो मैं समझ गया कि हुक्मरान बदल गया वो आदमी कहता मैंने तारीख नोट कर ली और जब मैं फिर शाम आया दमिश्क तो मैंने पूछा उन विनोदीज रहमतुल्लाह के इंतकाल क्या हुआ है उस तारीख से एक दिन पहले ही इंतकाल हुआ था खिलाफत के लौट के लिए क्योंकि मैं समझ गया कि जो कुछ हुक्मरान आते हैं उसका असर लोगों पर पड़ता है लोगों की तबीयतें वैसी हो जाती हैं और इन सब चीजों की असल वो हदीस है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं मेराज में गया तो मेरे सामने तीन प्याले रखे गए एक शहद का था एक दूध का था और एक शराब का और मुझे कहा गया कि तीनों में से कोई चीज चुनो तो ये इम्तिहान था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दूध वाला प्याला चुन लिया तो जिब्रील अमीन ने शराब के प्याले की तरफ इशारा किया उसके बाद अल्लाह के रसूल अगर आप शराब का इंतखाब कर लेते ना लगभग उम्मत को आपकी पूरी उम्मत गुमराह नबी के इंतखाब से पूरी उम्मत पर इतना असर पड़ता कि फरमाया पूरी उम्मत आपकी गुमराह हो जाती हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध चुन लिया था तो दूध का असर ये पड़ा कि इल्म आ गया उम्मत इसीलिए उम्मत का अरूज इल्म से हुआ और उम्मत का जवाल इल्म के छोड़ देने की वजह से हुआ इल्म में जब तरक्की की मुसलमानों ने तो अरूज मिलता चला गया और इल्म को दूध को जब छोड़ दिया तो बच्चे की जो असल गजा थी दूध को मिलना बंद हो गई बच्चे की परवरिश भी बंद हो गई बच्चे का भी बढ़ना बंद हो गया तो इल्म था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतखाब ऐसे था कि उसका असर ऐसे हुआ तो इस तरह हुआ करता है कि जो शख्स जिस चीज को चुनता है छोटों पर उसका असर होता है जो लोग दुनिया को चुनते हैं फिर उसके असरात खानदान पे आगे तक के मुरतब होते हैं और जो लोग अल्लाह से गफलत से बचते हैं और दुनिया में ही रहते हैं काम यही करते हैं खाते पीते हैं मार है पैसा है हजरत उमर रजी अल्लाह की जो बात थी ना इतने ईमानदार हैं कली रजी अल्लाह ने कहा इतने ईमानदार इस करते हैं कि बिल मोमिन आप खुद इतने ईमानदार आप खुद इतने अच्छे किसी वजह से आपकी रियाया इतनी अच्छी है फिर उमर रजी अल्लाह ने माल को तकसीम किया और फिर एक बात फरमाई जो असल में बतानी थी उन्होंने कहा कि अल्लाह आपने कहा है कि ज़िय्यन लिन्नास शहवातिहिम मिन निसा हमने लोगों के दिलों में डाल दी है औरतों की मोहब्बत बच्चों की मोहब्बत कहाँ की और लोग सोने और चांदी के जखाए की यानी बैंक बैलेंस ये वो इन चीजों की तो उन्होंने कहा अल्लाह जब आपने खुद ही इनकी मोहब्बत हमारे दिल में रख दी है तो हम इस मोहब्बत को निकाल नहीं सकते बस मेरे रब इतना कर दे कि ये मोहब्बत मुझे तेरे दीन पर अमल करने में फायदा दे यानी ये चीजें हों और मैं इनके साथ साथ दीन पे अमल करता रहूं और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर दीन पे अमल करने में भी दुश्वारी होगी एक आदमी है उसके पास खाने पीने के लिए है वो अच्छी तरह खुदा की इबादत करता है बिल्कुल ठीक है एक है उसके पास है और खुदा की इबादत से गाफिल है कि उसकी दुनिया है जिससे ले जा रही है शाहब रहमतुल्लाह जो चीज बताना चाहते हैं यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया जो क़यामत में एक औरत की बदशक्ल औरत की सूरत में सामने आएगी अब ये दुनिया कोई इसकी चीज नहीं है जिसे हम छू लें इसकी कोई शक्ल सूरत हमारे सामने नहीं है लेकिन क़यामत में जब आएगी वो गुड़िया तो वो उसकी एक शक्ल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये शक्ल ऐसी है तो बताते हैं कि आलमी मिसाल में इन चीजों की शक्ल ऐसी है अब यहाँ पर ये आलमी रिवायत जैसी भी है गजाली ने जहां से भी होगी लेकिन हकीकत उसकी ये भी है कि दुनिया को औरत से तशबीह दी गई अज़ली रज़ी अल्लाह अन्हु की अमीर मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु की आखिरी जिंदगी का जो आखिरी हिस्सा था उसने जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा है वो बताते हैं कि हमने बारहा उनको देखा कि वो रोते रहते थे उन पर बहुत गलबा हो गया था रोने का और ये हो जाता है कई लोगों के साथ आप देखेंगे उम्र के आखिरी हिस्से में रोने का गलबा हो जाता है रोते रहते हैं बैठ के कोई नहीं जानता क्यों बस हर एक की अपनी अपनी हालत होती है कि कोई क्यों रो रहा है ये अल्लामा इकबाल से हो गया है बहुत ज्यादा डॉक्टर जावेद इकबाल ने जवानी की सवाने लिखी है उससे लिखा है कि वालिद हर वक्त रोते रहते थे हर वक्त क्या लिखा है कि एक मतलब मैं गया तो वो तोलिया जो था भिगोर जीगा हुआ ऐसा कि निचोड़ने की वालिद साहब इतना वो रोए थे और सुर्ख औरा था उनका चेहरा वैसे भी कश्मीरी थे तो वो तो सुर्खी थी लेकिन सुर्ख औरा था चेहरा और मुझसे कहने लगे कि वहां रोम अभी गए हैं जरा उन्हें बुलाना तो मैं बाहर निकल के देखता रहा कि किस गली में कहां तो उन्होंने से कहा वहां अभी तो यहां पे ये गए ये हुआ करता है कभी-कभी कि आलमे मिसाल और आलमे अरवाह का जो दरवाजा खुलता है ना तो रूह कभी-कभी या तो इंसान की सूरत में आ जाती है और या रूह के साथ इंसान का ताल्लुक इतना गहरा हो जाता है कि इंसान उस चीज को देखने लगता है और इससे भी लतीफ तर चीज कभी-कभी हो जाती है और वो ये कि बातिन जब साफ होना शुरू हो जाए ना तो कभी-कभी जिससे आदमी मुतासिर होता है उसकी शख्सियत अपनी शख्सियत पे बाहर आ जाती है जब नमो के लिए आदमी सोचता है कि मैं वही बन गया मतलब माज अल्लाह किसी को डांटने की आदत पड़ जाए तो अंदर मैला होना शुरू होता है ना तो कभी-कभी इतना वो डाकू सारी हो जाता है जो उसके ज़हन में डाके की एक कैफियत है जो डाकू पर का तो कोई भी नाम ले लो गुंडा डाकू बड़ा मशहूर था तो समझता है मैं वही डाकू बन गया और मुझे कोई चीजें आ गई इसी तरह नेकी के काम में भी हुआ करता है कि नेकी और तक्वा इंसान पे غالب आ जाए तो कभी-कभी उसे महसूस होता है कि खुद ही अपना कैट बन गया है हजरत की रूह में आ गई है गलबा हो गया है ये सब चीजें ऐसी हैं जो आलिम रूहान के असली ताल्लुक रखती हैं इनका इनकार नहीं करना चाहिए आदमी की समझ में ना आए तो एक अलग बात है लेकिन ये होता है और बहुत जगह पे होता है हत्ता के काफिरों के साथ भी माज अल्लाह कभी-कभी होता है कि उन पे कोई चीज غالب आ जाती है शाहब अहमदुल्लाह अगर ये साबित करना चाहते हैं कि आलिम मिसाल में ऐसे हुआ करता है इससे उन्होंने यह हदीस की दलील के तौर पे पेश की अगली हदीस पेश की है इससे शाहब अहमदुल्लाह ने हजरते उसामा रजी अल्लाह की रिवायत लाई उन्होंने रिवायत का जिक्र नहीं किया फिर ये फरमाया कि हाल तो उन कहते चीज देखते हो कि मैं देखता हूं फइन्नी लअरा हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूं मेरे को कितने बरस रहे हैं कहां बरसते हैं तुम्हारे घरों के दरमियान और ऐसे बरस रहे हैं जिस तरह के बारिश बरसा करती है इस तरह कितने और आजमाइशें बरस रही हैं आजमाइशें तुम्हारे अंदर आ रही हैं हजरत उसामा रजी अल्लाह की असल में ये रिवायत है जो मिश्कात में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आज़ान का लफ्ज आता है उस वजह आज़ान अरबी में कहते हैं ऐसी ऐसी बिना को ऐसी ऐसी इमारत को जिसका छत जो है वो मुरब्बा हो या मुस्तकीम कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले ऐसी इमारतें औस और खज़रज ने बनाई और उससे पहले लोग जो घर थे वो गोल बनाया करते थे अब भी दुनिया में देखिए आपको मिल जाएगा कि लोग अपने घर को गोल बनाते हैं यहाँ बाराकों में अंदर चले जाए आबादी में तो पता नहीं कौन है मगर अपने घर गोल बनाए हुए हैं कमरे को चौकोर भी बनाया दूसरे गोल बना दिया अब मौलवी ने ये भी कह रही कदीम जमाने में कहीं होता होगा क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह को बनाया मुस्तकील बनाया उन्होंने गोल नहीं बनाया तो इसका मतलब है घर बनाते थे लोग अरबों में चौकोर बनाते होंगे मुस्तकील बनाते होंगे इनमें से किसी घर के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा में अकेले पे तशरीफ ले गए और आप फरमाया वो चीज देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं सहाबा रजी अल्लाह अन्हु के अल्लाह के रसूल नहीं आपने फरमाया तुम्हारे घरों में बारिश की तरह इतने बरसते हुए मैं देख रहा जिस तरह बारिश बरसा करती है किताब उल फितन में ये हदीस लाए हैं साहिब मिश्कात रहमतुल्लाह इस हदीस पे इख्तिलाफ है अहले तशरी का और अहले सुन्नत और अहले तशरी दूसरी रिवायात में मिलाते हैं और वो कहते हैं कि इसी तरह की दूसरी रिवायत भी आई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो सोई हुई है हुजरे वालियां इन्हें कोई उठा दे और मैं देखता हूं कितने बरस रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में आता है कि कह रहे हैं मुबारक बीवियों के घरों की तरफ ताजु सहारा रजी अल्लाह उन्हु के घरों की तरफ वो इन तमाम अहदीस को मिला के कहते हैं कि एक तो ये कहते हैं कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे ना ये कितना था और माज अल्लाह ये कितना सियाश है नाती इसीलिए तो कहा था कि मैं देख रहा हूं और फिर ये कितना जाहिर हुआ है जब आयशा के दान और सलील के दान के बाद से ये उन तमाम अहदीस को जोड़ के ये कहते हैं अहले सुन्नत व जमात ये कहते हैं कि इन अहदीस को जोड़ भी लो सब कुछ कर लो तो फितने की मुराद क्या है अल्लाह ने फरमाया है कुरान करीम में कि तुम्हारी माल और तुम्हारा औलाद फितना है यानी आजमाइश की चीज है तो आजमाइश है आजमाइशें होती हैं बच्चों के साथ भी होती हैं बुरों के साथ भी होती हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शद्दुल बलाय वल अंबिया सबसे बड़ी आजमाइश अंबिया अलैहिस्सलाम पे आती है کہ دنیا تمہیں نفرت اور دنیا تمہیں گالیاں اور دنیا تمہیں سوائے برائی کچھ نہیں ملتا امتوں سے لوگوں سے اور پھر بھی وہ محبت سے بیٹھاتے ہیں پھر بھی رحمت ہوتی ہے پھر بھی تعلیم ہوتی ہے تو اس کے مسئلہ کیا ہے کتنا تھا آزمائش تھی اور وہ آزمائش ہوئی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کو دیکھا تھا حضرت کے شر کے معنی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دیکھا تھا جو فتنہ پیش آیا ہے یزید کے دور میں جس کہتے ہیں واقعہ حرہ. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دو صدیوں میں شیعہ کیا کوئی علم کلام نہیں, علم کلام میں امتیاز معتزلہ کو حاصل کیا ہے ان کا جواب. علم کلام بحث کرتا ہے کہ میں کون ہوں, کیوں ہوں, کہاں سے آیا ہوں, مجھے کس نے بھیجا ہے, میرے لیے کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں ہے, ہے تو وہ کون سا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے تو اللہ کی ذات ہے یا اس کی صفات ہے, اچھا صفات ذات کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے, اچھا اللہ ہے کہاں, یہ ساری کی ساری مباحث علم کلام کی ہیں اور علم کلام میں سرمایا یا تو اہل سنت کے پاس تھا یا معتزلہ کے پاس تھا. شیعہ کے پاس پہلی دو صدیوں تک علم کلام میں پچھلے اور وہ یہ کہ معتزلہ نے کہنے کا تو آزاد خیال تھے, انیسویں صدی کے وقت میں سب سے پہلے جرمن جو مستشرق تھے انہوں نے معتزلہ کو اعتبار دیا اور اب ہمارے آخری دور میں یہ جو موبائل چڑی ہیں بہت شد و مد سے اور بہت زور سے اس میں بڑا ہاتھ ان مستشرقین کا ہے جنہوں نے پڑھا اور انہوں نے عربی اور فارسی اور اردو کو پڑھا بہت اچھا پڑھا. یہ ڈاکٹر نکلسن تھے علامہ اقبال کے استاد, انہوں نے پڑھا اور آرنڈ تھے انہوں نے پڑھا. اتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ کہ شبلی نعمانی آرنڈ کو قسطنطنیہ یعنی ترکی تک پہنچانے کے لیے گئے. علی اقبال نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہم کسی کے احترام میں سے دروازے تک جاتے ہیں تو اس آدمی کو ایشیا کے آخری دروازے تک چھوڑ کر اس کا دھیان ہے. تو پھر شبلی گئے ہیں وہ ان کو چھوڑنے کے لیے. آرنڈ کی بڑی تعریف کی علامہ اقبال نے اس میں, اس لیے کہ اقبال نے پڑھا تھا ان سے اور فلسفے کے بہترین استاد اور انہوں نے اقبال کو شاعری پہ بھی لگایا, اس چیز پہ انہوں نے ان کی ہمت بتائی اور بھی اسباب اور وجوہات تھے. شبلی نے ان کو انگلش پڑھی تھی اور انہوں نے شبلی سے عربی پڑھی تھی. یہ جتنا بھی علم پھیلا ہے اس آخری دور میں پہلی جنگ عظیم کے پہلے اور پہلی جنگ عظیم کے تو بعد بہت زیادہ, جب جرمن غالب آئے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو جو لوٹا اور مارا, جتنے بھی ممالک تھے فرانس نے خاص طور پہ جب ہٹلر ان علاقوں پہ حملہ کیا اور لبنان چلا گیا اور بلاد شام چلے گئے تو یہ لوٹ لوٹ کے کتابیں مانے جاتے. اب بھی آپ دیکھیں تو امریکہ نے جو حملہ کیا افغانستان پہ اور عراق پہ تو باقاعدہ فرار میں آتا رہا کہ وہاں سے اس افغانے سب سے پہلے منتقل کیے گئے. عراق میں جو چیزیں امریکہ لے کے گیا تھا پہلے دن کی نیوز کی دیکھیں تو اس میں دو تین چیزیں آپ کو ملے گی, ایک تو تیل کے کنویں پہ قبضہ ہو گیا اور تیل فوراً بھجانے کا بندوبست کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھجوانے کا بندوبست کیا گیا. اس لیے ہم نے امریکہ میں ملاڈی قاری اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی رات دیکھی اور ان کی کتابیں حیرت ہوئی کہ اتنی مسلمانوں کی قدیم کتابیں یہاں, تو انہوں نے کہا یہ افغانستان سے لائے, اتنی قابل قدر پہلی ہیں. ابھی ہم شام گئے تو وہاں پر ایک شہزادہ تھا سعودی, اپنے آخری مراحل نہیں دیکھا, اس نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بس اتنا سا رکھا تھا شہر کے ہاتھ کا لکھا اور اسے اتنا عشق تھا اسے کہ بار بار سنتا تھا. بیچنے والے نے بیچا 20 بلین ڈالر میں اتنا رکھا بیچا, تو شہزادہ تھا خرید سکتا تھا, اس کے خریدا شہر سے محبت اور تعلق کی وجہ سے. تو مسلمانوں نے یہ جو کام کیا جب کی کتابیں چھوڑ دی اور اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت بری تھی, سیاسی زوال آیا, سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ علمی زوال آیا. سیاسی زوال جب بھی آتا ہے وہ ایک طرف بڑھ جاتی ہے اور ایک طرف بیٹھ جاتی ہے, دل منہ ہوا ہے قاعدہ ملیا تو ہم نہیں کہتے, لیکن مسلمانوں کا جب بھی سیاسی زوال آیا اس کے ساتھ ساتھ علمی زوال بھی آ گیا اور روحانیت میں زوال نہیں آیا وہ بڑھ گیا. یہ تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو مسلمانوں کا سیاسی زوال اور علمی زوال بیک ہوا اور جب یہ زوال ہو رہا تھا تو ہمارے پاس اللہ کی ذات اللہ کا تعلق صوفیہ مشائخ بڑھتے چلے گئے, दिल्ली जब तबाह हो गई थी तो 22 खानकाहें थी लोगों के पास वहां पे, जिस दिल्ली में अब मुश्किल से दो तीन खानकाहें रह गई होंगी जहां कोई इंसान इंसान बने, वरना 22 खानकाहें थी, एक से एक बड़ा आदमी बैठा हुआ था। इल्मी सवाल ऐसा था कि अंग्रेज सब किताबें दे, जर्मन जो लेकर गए हैं पहली जंगेजीन से पहले उसके बाद, और फ्रांसीसी जो लेके गए हैं वहां के लोगों ने अरबी पढ़ रखी थी, फारसी पढ़ रखी थी, 17वीं सदी से ही यूरोप में अरबी पढ़ने का रिवाज हो गया था। अब नतीजा उसका निकला कि कुरान करीम को पढ़ना चाहते थे और मुसलमान ऐसे थे कि इन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा नहीं किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने खुद ही तर्जुमा किया, खुद ही उन्होंने पढ़ा, जो कुछ गुमराही या सही में समझ आया वही हो चीजें तेरे, इसलिए मुसलमानों ने भी काम हो रही किया। अब भी इस साल में भी हम ये जो बात आपसे अर्ज कर रहे हैं शायद इंटरनेशनल लेवल पे लोग सुन रहे होंगे, अब भी मुसलमानों ने अभी तक किसी जुबान में ऐसा लिटरेचर तैयार नहीं किया जो इस जमाने की सतह पर पेश किया जाए और लोगों के लिए इस्लाम का पैगाम हो। चाइनीज में नहीं, जापान की जुबान में नहीं, कि करोड़ों अरबों हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे हमसाए, कभी नहीं सोचा कि लोगों के दीन और मजहब का क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया किधर जा रही है। इंग्लिश में हत्या के वो लिटरेचर आप बच्चों को नहीं दे सकते जो बच्चों की जेनी इसका के मुताबिक हो। एक होती है दुनिया जमाने की जुबान, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जमाने की जो जुबान होती है ना वो हमने अब तक नहीं सीखी है ना हमने अब तक सीखा है। जमाने की जुबान है कि आप कहें कि यह हवा है, ये चीजें ये अल्लाह ने पैदा की हैं, और बस ठीक है लोग मान लेते थे पहले जमाने की ही जुबान थी ना। अब आप बच्चे को समझाते हैं कि बेटे ये जो है ना इसका एक फॉर्मूला है, वो ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन है, जिससे मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन देखो बेटे इन सब चीजों को असल में अल्लाह ने पैदा किया है। ये अब जमाने की जुबान आ गई ना, अब उसी बच्चे को कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया बस चुप करो, वो कहेगा पता नहीं ये क्या करते हैं। इसलिए माज़ अल्लाह नस्लें अंदर से मुर्तद हो जाती है, खुदा पे इत्मीनान हो जाता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे एतमाद उठ जाता है। वो बोल इसलिए नहीं सकता कि बोलेगा तो फतवा लगेगा, बोलेगा तो लोग कुछ कहेंगे, बोलेगा तो बेचारा इस्लाम इस्लाम से अजीज भी है, लेकिन उसको समझाया किसने अपनी जुबान में किए। यही चीज इंटरनेशनल लेवल पे है कि हम अभी तक इस्लाम को जमाने की जुबान में पेश नहीं कर सके। वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ बागियां क्यों थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां क्यों की थी, तुम इतना लड़ते क्यों रहे, ये चीज ये चीज ये चीज, हमें से कौन है जिसने जिंदगी वक्त की हो गया। मैं एक ही मसले को लिखूंगा समझाऊंगा, असल में मसला ये था, इस्लाम ये कहता है आप उसे यहाँ पे कौन से गलत समझे हैं, ये अभी तक नहीं है, अभी तक। तो अंग्रेजों ने जब किताबें दी तो फिर उन्होंने उनसे जो नतायज साबित किए वो अपनी मर्जी के, इसीलिए जर्मन जो थे उन्होंने जब इस चीज पर पैर शुरू की कि जनाब ये क्या हुआ था, फितने क्या थे, इसमें क्या क्या चीजें पेश आती रही, तो उन्होंने मौतजिला की हिमायत की। इसलिए कि मौतजिला कहने को अकेले आजाद थे, मौतजिला क्या बड़ा आसान है ये कह देना कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हु कोई महसूस नहीं थे, वो तुम जैसे इंसान ही थे, उनपे तनकीद करते रहे, तो इससे ज्यादा खुला दरवाजा और क्या चाहिए था। यही मौका शिया का था, अइमा का हूं पहले वो काफी कहते थे सहाबा रजी अल्लाह अन्हु को पुराने जो थे जो समझदार अकलमंद थे, अखबारी रिवायात अलग है लेकिन उनके यहाँ जो कतई रिवायात है वो अलग है, दोनों में फर्क अगर करें तो उन्होंने ये मतलब मौतजिला से किया था। इसी तरह मौतजिला ये कहते थे कि कुरान करीम जो है इसका 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 मुतबादिल दाना अल्लाह ने जो चैलेंज किया है आपके सूरत से इसे एक सूरत बना लाओ, वो कहते थे ये अल्लाह ने तकवीनी तौर पर मना किया वरना शरीयत जारी है, दुरुस्त हो सकता है, समझे, बड़ी नाजुक बात। वो कहते थे कि कुरान जैसा कुरान बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये तो अल्लाह ने खुद मना कर दिया तकदीर में कि किसी को ताकत नहीं दी बुलाने के लिखे, वो कहना कुरान जैसी किताब लिखना कौन सा मुश्किल है, हम खुद लिख सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। ये मौतजिला कहते थे, यहीं से ये बीज पड़ा, यहाँ ये रिवायत आ गई कि कुरान कामिल नहीं है, मंसूख है, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, और यहीं से फिर आप लोगों ने लबनान में पूरा कुरान करीम लिख दिया। आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको पूरा एक कुरान मिलेगा, उसमें कुरान जैसी 114 सूरतें हैं, कुरान जैसी आयात हैं, अरबी भी वैसी है, सब कुछ रहता है। ये मौतजिला का असल में तसव्वुर था, इस मौतजिला की ज़हनी आजादी, कहने को ज़हनी आजादी, इसके हमें कहने को कह रहे हैं कि वरना ये मौतजिले अपने मामले में बड़े हिस्सा थे, اہل سنت والجماعت کو ایک کافر قرار دیتے رہے اور اہل سنت والجماعت کو گدا دیتے رہے. اتنے بڑھ گئے تھے, اتنے بڑھ گئے تھے اپنے عقائد میں کہ یہ صاحب کشاف جو ہے زمخشری اس نے تفسیر لکھی ہے کشاف نے. اب ان کا عقیدہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ فرشتے انسانوں سے افضل, تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے کبھی فرشتے افضل ہیں جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے نہیں پہنچے جس سے جبریل امین پہنچے ہوئے تھے معاذ اللہ. اور اسی لیے دو مقامات تو ایسے ہیں تفسیر کشاف میں جہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی کی زمخشری نے. ایک وہ جو سورہ تکویر میں اور ایک سورہ توبہ میں, سورہ توبہ میں آیا نا کہ اللہ من کا نماز مطلب اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں اجازت دے دی تھی منافقوں کو مدینہ منورہ میں رہ جائیں اور آپ کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اس پہ ایک شاف نے لکھا ہے کہ اللہ نے گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ بے تماف ہوتا بدترین بات ہے نبی سنے کے کہ بے تماف ہوتا کے لفظ لکھے ہیں حضرت زمخشری نے. یہ سب کہنے کو آزادی تھی لیکن حقیقت میں اپنے مقصد میں اتنے پختہ تھے کہ ان کی جب حکومت میں اثرات آئے ہیں تو انہوں نے حکومت وقت کو مجبور کیا کہ جمعے کے دن منبر پر بیٹھ کے اہل سنت والجماعت کو گالیاں دو, کافر کو ان پہ لعنت بھیجا کرو. ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پہ لعنت بھیجتے رہے یہ چیزیں. پھر حتیٰ کہ اللہ نے غلبہ دیا جب اہل سنت والجماعت کو حکمران کی کہا گئے تو انہوں نے ان معتزلہ کو پکڑا, انہوں نے کہا کیا ظلم کرتے ہو, یہاں پر یہ بھی مسلمان ہیں, اہل سنت والجماعت کو کیوں گالیاں دی جائیں. پھر معتزلہ ہٹنا شروع ہوئے یہاں تک کہ آخری قلعہ ان کے پاس خوارزم رہ گیا تھا کہ خوارزم کے ہیں تاج بادشاہ اور خوارزم جس کے متعلق لوگ سنتے تھے کہ یہ خوارزم کا رہنے والا کہتے تھے یہ خوارزمی ہے تو یقیناً معتزلی ہے. اور خوارزم کے لوگ ان کے علم کا اندازہ لگاؤ وہاں پہ مائنس ٹیمپریچر چلا جاتا تھا. تو خوارزم والوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ. یہ اب کہتے ہیں نا یورپ والے کے پلان چیز کے آداب و شمار جمع کرو, یہ ہو گیا دنیا میں اتنی جنگیں ہوئی سمندر کا اتنا پانی, یہ ہو مسلمان کے سارے میدان پہلے طے کر چکے تھے. خوارزم والوں نے کتابیں لکھی کہ ہمارے یہاں کتنے شہر میں ایسے آدمی ہیں برف کی وجہ سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے جس کی ناک کاٹ دی گئی, جن کے کان کٹ گئے, جن کے پاؤں کٹ گئے, وہ پورا ڈاٹا مل جائے گا اس زمانے کا. وہ کہتے تھے یہ موسم کی وجہ سے ایسے ایسے ہوا ہے. اب مسلمانوں نے چھوڑ دیا, اس زمانے میں مسلمان قوم کا ایک سچ انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا. تو معتزلہ کی یہ جو چیزیں یہ مستشرقین کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو واقعی مٹیریل مل جاتا ہے کہ قرآن محفوظ نہیں, مسلمانوں کی روایتوں میں ایک مٹیریل مل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کم درجے کے تھے اور جبریل زیادہ درجے کے تھے. انہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا اس وقت بھی اور اب بھی, اور اب اس طرح کرتے ہیں کہ اب وہ اس کو جدید رنگ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. آرٹیکل لکھ دیا اور کسی مسلمان کے نام سے ڈال دیا, بچہ پڑھتا ہے اس آرٹیکل کو کہتا ہے اچھا ہماری کتابوں میں یہ بھی آیا, اب انہیں کون سمجھایا کہ بیٹے یہ آیا ہے یا نہیں آیا, باپ نے پڑھا ہو تو سمجھایا نا کہ اتنا کچھ آیا ہے یا نہیں آیا. جب والد ہی کوئی نہیں ہے, انہیں کوئی انٹرسٹ اور دلچسپی نہیں ہے دین سے اور خاص طور پہ عقیدے سے, تو بچے کا عقیدہ بگڑ جائے. تو وہ جو زمانے کی زبان ہے ہم اب تک کسی زبان میں لٹریچر پیش نہیں کرتے, نہ انگلش میں جو دنیا کی انٹرنیشنل زبان ہے, نہ چائنیز میں جہاں ایک ارب سے زیادہ آبادی ہے, جاپان والوں سے دیکھو اور انگلش کے بعد وہ دوسرا نمبر فرینچ کا آتا ہے. اسپین کی زبان میں ہم نے کون سا ایسا لٹریچر ہے جس کو ہم دیں غیر مسلموں کو اور ہم کہیں جناب کتنے پڑھ گئے, یہ ہے اسلام, باندیاں کیوں بنی تھی اس کی وجہ یہ تھی, غلام کیوں بنے تھے اس کی وجہ یہ تھی, اسلام نے شادی کی اجازت کیوں دے دی یہ وجہ تھی. یہی پانچ سات تک بڑے بڑے مسائل ہیں نا جن میں لوگوں کو الجھاتے ہیں, ان چیزوں کا جواب نہیں لکھا گیا زمانے کی زبان میں. اس لیے مسلمانوں کو اور کام سے دکھ سکتے ہیں, اس پہ بہت محنت کریں. مستشرقین نے معتزلہ کو استعمال کیا, معتزلہ انہوں نے کیا کیا جتنے ان کے رسوم تھے علم کلام میں اس کو پھر آہستہ آہستہ شیعہ نے لے لیا, اور شیعہ معتزلہ ایک طرف قریب ہیں اور دوسری طرف معتزلہ کے قریب قریب ترین حنفی فقہا ہیں, اس لیے کہ احناف کو خود اپنے قول کا تھا. لیکن الحمدللہ احناف نے ایک ایک چیز چھان کے لی, انہوں نے کہا معتزلی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہوں گے بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن یہ فرق ہے. شیعہ نے کہا جو انہوں نے کہا بس ہم منوان لے لیتے ہیں. اس لیے تیسری چوتھی صدی کے بعد جا کر شیعہ نے علم کا نام آیا, اور اب تو اتنا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہو شیعہ میں پورے شہر میں جو علم کا نام کو جانتا ہو کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں. وغیرہ عمومی طور پر لوگ محرم کے ماسوم کو سمجھتے ہیں یہی طرح چند ایک رسموں کو, وغیرہ اہل تشریح میں بھی وہ جو علمی تنتنا ان کو کسی زمانے میں اہل توحید کہتے تھے, یعنی خدا کی توحید اگر کہیں محفوظ ہے تو ریجیکٹ ہے. لوگ یہ کہتے تھے کہ جادو کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو صرف شیعہ کرتے. جادو کا انکار کوئی نہیں کرتا, ہم نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جادو ہوتا ہے. شیعہ اللہ انکار کرتے تھے, کہتے تھے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جادو کا جس دنیا میں پایا نہیں جاتا. اب دیکھو جس شہر میں جتنا بڑا عامل ہے وہ اپنے مطلب کو شیعہ کا اظہار کرتا ہے, اس لیے کہ ان جانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا تھا کیا نہیں تھا. کسی زمانے میں عروج تھا, دنتنا تھا, ان میں کلام تھا, اور شیعہ آزاد اس پہ بحث کرتے تھے, لکھتے تھے, معتزلہ سے لیا ہوا تھا. اور معتزلہ کی دوسری طرف یہ تھی. اب یہاں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما دیا کہ میں دیکھتا ہوں کتنے نازل ہو رہے ہیں, تو شیعہ آزاد نے یہ کہا کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ مراد تھی. ہم کہتے ہیں کتنے تو مراد تو آزمائش ہے نا, کہ آزمائشیں آ رہی ہیں. اب آزمائش میں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے, یا کامیاب اور ناکام کے درمیان ایک اور راستہ ہے, وہ یہ کہ ایک آدمی اخلاص سے کام کرے اور کام پھر واقعی اللہ کے نزدیک درست تھا. مثلا ایک بچے نے پیپر میں جواب لکھا, جواب اس نے جدھر سے بالکل ٹھیک لکھا, باہر نکلا تو اس نے دیکھا جب پیپر تو اس نے کہا اوہ میں نے کیا لکھایا ہوں, اس کا تو جواب یہ تھا یہ نہیں تھا. بچے نے محنت کی, سب کچھ آتا تھا, جواب لکھنے میں رہ گیا. بالکل اسی طرح بارہا ہوتا ہے کہ انسان بڑی محبت سے تعلق سے اخلاص کے ساتھ ایک کام کرتا ہے, لیکن پتا چلتا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا. ڈاکٹر کی دوائی جان بوجھ کے تھوڑی دیتا ہے کہ کوئی مر جائے, وہ تو دعا بھی کرتا ہے اللہ سے, جو مشفق اور مہربان ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کے باوجود چیز غلط ہو جاتی ہے. ماں باپ پیسہ دیتے ہیں بچے کو, بچے آپ رکھیں کہ اسکول میں کام آ جائے گا, بچے جا کے فلم اگر اس پیسے دیکھ آئے تو ماں باپ کی شفقت سے تو کچھ دینا, انہوں نے تو اخلاص سے لیا. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں, طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آئے ہیں, ان سب کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے یقیناً اجتہادی طور پر غلطی ہوئی, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ گار تھے, جان بوجھ کیسے کرتے رہے, سیاسی حالات تھے, انہوں نے جس چیز کو بہتر سمجھا اسے اپنا لیا, یہ الگ بات ہے کہ بعد میں نتائج اس کے کیا نکلے. لیکن وہ لوگ اپنی نیتوں میں مخلص تھے, اپنے کام میں مخلص تھے, یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کچھ کر رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں بصرہ کے لیے, جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں, جس کو کیا کہتے ہیں وہ آزمائش تھی, یا کتنا وہ تو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ آزمائش تھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منع کیا, ان کا والد بالکل مدینہ منورہ سے نہ جائے. جو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لڑائی ہو جائے. اسی لیے کبھی کبھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یقیناً افضل ہے, خلیفہ راشد تھے بھائی, چوتھے خلیفہ راشد تھے, ان کے مقابلے میں کون تھا. لیکن سیاسی اپروچ جو ہے نا, ایک نسل کی دوسری نسل سے بدل جاتی ہے. ایک نسل کو ہے جو فارغ میں سیاست کرتی تھی, ایک نسل کو ہے جو اب سیاست کو دیکھتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, بچہ ہے باپ سے تو چھوٹا ہی ہے نا, لیکن اس کا زاویہ مختلف ہے دیکھنے کا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیاسی رائے میں اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑھ گئے. اس لیے جہاں سیاسی معاملات آتے ہیں وہاں حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی رائے آپ کی دیکھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ دماغ کیسے ایسے سوچتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں, وہ مشورہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے نہ کریں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں, اور بعد میں پھر پتا چلتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی رائے بڑی تھی. وہ کہتے نہ ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بنایا تھا اتنا حاضر نہیں سید, میرا یہ بیٹا تو سردار, میرا یہ بیٹا تو آقا ہے لوگوں کا. اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کی رائے یہ مومنین کو علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے نہ نکلیں نہ جائیں. آگے جو لوگ آ رہے ہیں اگر کوئی ٹکراؤ مشکل ہو تو بھی کیا ہوگا, علیہ السلام کا میں جاؤں گا, مجھے مذاکرات کروں گا, بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. اما غلط نہ آگا تم نے عثمان, عثمان علیہ السلام کے خون ہی پہ تو بحث کر دیے نا, چلے جاتے ہیں اس کے گھر کا, نہ جائیں نہ جائیں. حضرت علیہ السلام چلے, امیر مومنین علیہ السلام کے سامنے لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا چار آدمی ہیں جن کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑھ گیا. تقریر کی انہوں نے اپنی قول میں, انہوں نے کہا سب سے زیادہ تقی آدمی طلحہ رضی اللہ عنہ ہے, یہ میرے سامنے آ. اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ ان میں شجیع اور بہادر, جو موت سے بالکل نہیں لگتا, زبیر رضی اللہ عنہ ہے, یہ بھی میرے سامنے. اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ لوگوں سے بے نیاز, اور جس کے دل میں لوگوں کے لیے کوئی یعنی اللہ کے مقابلے کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات میں مست ہے. مراد یہ تھی فرمایا سے زیادہ رضی اللہ عنہ. और लोग सबसे ज्यादा जिसकी इबादत करते हैं सबसे ज्यादा जिसकी मोहब्बत है उसकी मांग मांग के करते हैं आयशा रजी अल्लाह अन्हा कि चारों मेरे सामने आ गए हैं और मैं आजमाया जा रहा हूं अब मेरा क्या होगा और फिर से इजना दी थी अल्लाह का कि मैं इनसे बात करूंगा और देखो मैं इन्हें फर्श की तरफ लाऊंगा उस्मान रजी अल्लाह से हूं मैं उससे बात करती हैं तो खिलाफत कायम होगी एस्टैब्लिश होने दो फिर उसके बाद बात करें और फिर हुआ जो हुआ ये तो था उसका मौका का जवाब क्या कहते हैं इससे बात ही नहीं आजमाई और आजमाई हुई और सीधा आयशा रजी अल्लाह अन्हा जुबैर तलहा रजी अल्लाह अन्हा सारी मोहब्बत इखलास के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में इनसे इज्तिहादी तौर पर खता होगी हम ये नहीं कह सकते कि वो गुनाहगार थे जानबूझ के लड़ने आ गए थे जानबूझ के मुसलमान का खून कर दिया था उन लोगों की नीयतें साफ थी इसकी वजह से अल्लाह तो जानता था ना कि होगा और अल्लाह ने इस वाक्य से कहीं पहले कह दिया था कि अल्लाह इन सबसे राजी है तो अल्लाह ने रजा का जो अपना सर्टिफिकेट दिया था वो खुदा को मालूम था ये सब कुछ उन्होंने इसके बावजूद अल्लाह ने पहले से कह दिया कि बराबर रहने वाक्य कितना था याद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं कि ये कितना वो था जो हजरा में पेश आया और हजरा में पेश आया कि जब यजीद की फौज ने या इन लोगों ने फिर जैन रजी अल्लाह को शहीद किया तो जैन लाबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बच गए कर्बला में जब जैन लाबिदीन रहमतुल्लाह को शहीद करने के लिए वो आगे बढ़े फौज वाले इन्हें भी खत्म कर दें तो जैन लाबिदीन रहमतुल्लाह कहते बिल्कुल मेरे सर के आ गए और किसी ने उसे कहा कि बीमार छोड़ दो जैन रजी अल्लाह का बेटा ऐसे रिश्ता हो और जैन लाबिदीन रहमतुल्लाह कहते हैं मुझे शाम ले गए और मैं वहां एक आदमी के पास रहा और उसने फरमाया मेरे वालिद मेरे दादा का इतना मोहतिन था कि बात करता था और रो पड़ता और उसने मुझे रखा और मेरी खिदमत की और सुबह शाम मुझे दूध पिलाता था फल पिलाता था बड़ी मोहब्बत से पेश आता था और जब मेरे वालिद का जिक्र करता था कर बना का तो झाड़े मारता और कहता मैंने बैठ के पढ़ा था फरमाते मेरी खिदमत की इतनी इज्जत हुई इतनी कदर हुई एक दिन दरवाजा खोला तो देखा एक और आदमी उसके पास था और ये रो रहा था तो मैंने देखा तो फौजी था मैंने कहा क्या हुआ तो उसने कहा ये आपका पूछता हुआ आया था तो मैं 20 रुपए में आपको इसके हाथ हजरत बेच रहा हूँ पैसे चाहिए थे मैंने ले लिए बाकी मुझे दुख बहुत है आपका कम बहुत है लेकिन अब भी रोगा रो भी रहा था 20 रुपए में बेच दी जैन लाबिदीन रहमतुल्लाह अलैह कहते थे फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे दादा अली रजी अल्लाह के साथ क्या हुआ है मेरे वालिद हुसैन रजी अल्लाह के साथ क्या हुआ है कि उन्हें बुलाया भी और मौके पे आए भी नहीं और उनकी मदद भी नहीं की और कर्बला में शहीद होने दिया यही इन्होंने मेरे साथ किया 20 रुपए में मुझे बेच भी दिया और रोका भी जाता था कहता था हजरत पहले बैत से बड़ी अंदर दी है वो भी ले गया कहके मदीना मुनव्वरा पहुंचे मदीना मुनव्वरा आके इन लोगों को जो चीज की बहुत गहरी बात सुनने की जैन लाबिदीन रहमतुल्लाह अलैह कहते अभी हम हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल नहीं आप हदीस से गौर कीजिएगा खुद कि जितने भी लोग इस्लाम के नाम पे स्टेबलिश गवर्नमेंट से टक्कर लेते हैं ना बिल अमून नाकाम होता है इनके साथ ही इन्हें मौके पर छोड़ जाते हैं ये फिर कहते रहते हैं हमारे गद्दारी हो गई ये हो गया ये हो गया भाई पहले दिन जब से तुम्हारे पास लोग थे तुमने क्यों नहीं सोच किया ये कुछ भी कर सकते हैं बगैर असबाब और सामान के लड़ पड़ना चढ़ दौड़ना गवर्नमेंट को मारो ये कर दो कर दो लाके तुम लोग क्या करते हो कौन से अल्लाह की नजर आई अल्लाह ने अकल समझ दिए या नहीं बहुत कम शाहजन आदिब की तारीफ में हुआ होगा कि ऐसे इनकलाब आ जाए पलट जाए और अवामी ताकत था अवामी ऊपर जब ताकत होती है तब जाकर कई फसलों में इंकलाब आते हैं ऐसे नहीं हुआ करता कि खाबों की बुनियाद पे और कष्ट और करामतों की बुनियाद पे स्टेटिस गवर्नमेंट बदल जाया करें इन लोगों को बड़ी सही माना में फैसले की तौफीक अल्लाह ने दी जैन लाबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया अपने लोगों को और उन्होंने कहा खबरदार कि मैं आइंदा देखूं हम लोग हुकूमत के खिलाफ है पर ये बात हसन रजी अल्लाह अन्हु कह रहे थे देखो ये है दिमाग उन्होंने वफात से पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनका मेरे भाई आपने देखा हमारे वालिद अली रजी अल्लाह अन्हु का रवैया तीनों खुलफा के साथ खादिमाना रहा उनके साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आए इज्जत से और जब वालिद के ना उन्होंने नाना से बात की उन्होंने कहा देखिए हमारे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी मेहनत करते थे और जब हुक्मरानी का वक्त आया तो अल्लाह ने अपने बात वापस बुला फिर वालिद तीनों खुलफा के मुशीर के तौर पे काम करते थे फिर जब उनकी अपनी खिलाफत आई तो लोगों ने काम करने नहीं दिया اور اللہ کی قسم حسین دونوں گروہوں کی کھوپڑیاں میرے دونوں ہاتھوں میں تھیں. ایک طرف میرے والد کے دوست تھے, ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج تھی, اس میں بھی مجھے لوگ جانتے تھے, اور میں چاہتا تو ان دونوں کھوپڑیوں کو ٹکرا کے پاش پاش کر دیتا اس امت کو. لیکن مجھے خیال آیا کہ اس امت کو بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے, میں ان کا نوازتا اس امت کو آپس میں لڑا ہوں. اور چھ مہینے میں اس پہ غور کرتا رہا, اور چھ مہینے کے بعد میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ حکومت کریں, اور تم جانتے ہو کہ میں نے حکومت چھوڑ دی. حسین رضی اللہ عنہ کا جی کہنے کہ حسین میرے پاس لوگ تمہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لائیں گے, ہمارے والد کے دوست, اور وہ کہیں گے اٹھو حسین نکلو حسین, کبھی نہ جانا. میرے بھائی اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ علم اور حکمت اور نبوت کے علوم ہماری نسلوں میں رہیں اور حکومت دوسرے, اس لیے اپنی نسل میں علم کو باقی رکھنا. یہ صرف حسن رضی اللہ عنہ کی باتیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی, اس میں کثیر وغیرہ جو ہوا ہوئی حسین رضی اللہ عنہ نہیں, اس کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی باتیں بالکل نہیں بولی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال حکومت کی ہے, لوگوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو, حسین رضی اللہ عنہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے معاہدہ بڑے بھائی کا کہتے میں دنیا بعد ہوا جو کچھ کی ہوا. مختصر قصہ یہ کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ٹکرانے سے انکار کر دیا. مدینہ منورہ میں جب اطلاع پہنچی کہ وہاں یہ حادثہ ہوا ہے کربلا کا, اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ہم یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے, ہم اس کو نہیں مانیں. بغاوت ہو گئی, اور بغاوت بھی اس طرح سے ہوئی جیسے حنزلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن حنزلہ, وہ آئے اور انہوں نے لوگوں میں بات شروع کی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر حقیقہ اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شہید کر دیا گیا تو آسمان سے پتھر برسیں گے. ایک آدمی نے اپنی پگڑی اتار کر اتار پہنچی اور اس نے کہا جس طرح میں پگڑی پہنچ رہا ہوں اور میرے جسم سے لگ ہو رہی ہے اسی طرح یزید کی حکومت پہ بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں, اسے رد کرتے ہیں. دوسرے نے جوتا اتار کے مسجد میں پہنچ دیا, اس نے کہا اس طرح یزید کی حکومت سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. جوتوں اور پگڑیوں کا ڈھیر رکھ گیا اور یہ لوگ چلے گئے اور بنو امیہ. اس دن مدینہ منورہ میں 1000 کے قریب افراد تھے, سب کو قلعے میں بند کر دیا اور سب کا معاملہ. اب عمومی تھے سارے, یزید عمومی تھا, مدینہ منورہ کا گورنر جو تھا وہ جب اس بیان رضی اللہ عنہ کا پوتا تھا, یزید کا چچا لال بھائی تھا. یہ بنو امیہ پہ بیٹھے بٹھائے مصیبت آ گئی تھی, ہو کیا گیا ہے انہوں نے سب لکھ دی. دوسرا خاندان جو نہیں تھا مدینہ منورہ میں عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سب سے بڑے آدمی تھے. انہوں نے اپنے سب بھانجوں بھتیجوں بیٹوں وغیرہ وغیرہ عورتوں مردوں کو جمع کیا اور ان کا خبردار یزید کی میں بیعت کر چکا ہوں, حکومت یزید کی ہے, ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے, چھوڑ دو حکومت سے لڑنا اور ٹکرانا, کچھ بھی ہو جائے ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے. اس میں چار لوگ تھے, انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں حکومت سے ٹکر لینا اب اتنا آسان نہیں. تیسرا خاندان جو تھا وہ اور بھی سارے اور وہ لوگ بھی نہیں اٹھے, وہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر ابن عثمان جی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور میں یہ کام نہیں کروں گا. تو ان طرح یہ تین چار خاندان بڑے الگ ہو گئے. زین العابدین رحمۃ اللہ کو کہا گیا ان کا بالکل نہیں, ہمارے خاندان میں سے کوئی اس بغاوت میں شریک نہیں ہوگا. یزید کو جب اطلاع ملی تو وہ اس حال میں اطلاع ملی اس کو کہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اسے گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی تھی, تو عظیم اللہ نے کہا کہ تم ٹھنڈے پانی میں اپنے پاؤں کو رکھو, کوئی وہ بھی ایسا علاج ہوتا تو ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھ کے بیٹھا ہو. تو جب پتا چلا کہ اہل مدینہ نے کر دیا ہے یہ اور ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی ہے, مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پہلی بغاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی خلافت وہاں قائم ہو گئی ہے, رمین شریفین اگر حکومت نہ رہی تو پورے عالم اسلام میں اس کا کیا اثر پڑے گا. اس نے اپنے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہا کہ تم جاؤ اور نعمان جا کر ان اہل مدینہ کا سبق سکھاؤ. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیا. نعمان اور مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ عنہ دونوں کی ماں ایک, باپ مختلف تھے ماں ایک تھی, اس کے بھائی تھے. نعمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیا, ان کا میں نہیں جاتا. زیاد کو اس نے پیغام بھجوایا, زیاد نے جب یہ کربلا میں جو کچھ کیا تھا جب اسے پیغام ملا کہ یزید اب یہ چاہتا ہے تو سکا اللہ کی لانو تو یزید پہ, کل میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہاتھ قتل کر کے خون ہاتھ سے رنگے, آج اہل مدینہ کو بھی میں اس کے پیٹ میں لے لوں, میں تو بالکل نہیں کروں گا. اس نے اس لیے کہا کہ اس کو اس کی ماں نے بڑی لانت ڈالی, जब ये सारा करबला का वाकया हो गया घर पहुंचा तो वहां भी जूते पड़े उसके काफी शिकायत की होती हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा था उस तक के खानदान के लोग थे तुमने ये क्या कर दिया तो मां ने जो कुछ कहा उसका असर हुआ सियासी तौर पर ये असरात हुआ करते हैं बहुत कम लोग होते हैं जिन पर खानदानों के या घर के ऐसे सियासी असरात पड़ते हैं और उमर रजी अल्लाह अन्हु रहते नहीं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया ने एक सियासी काम में उन्हें मशवरा दिया कि इन मोमिनीन आप ये कर लें और उसका असर पूरी मुमलिकत पे पड़ सकता है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हंस पड़े और उन्होंने जो जवाब दिया वो है मतलब समझना चाहिए उसको हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मेरी महबूबा तुम तो ऐसे वजह खिलौना होता है कभी कभी हम जी पहला लेते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी अमूर में भी मैं तुमसे मशवरा कर तुम्हारी बात सुनने को ये बात नहीं है कि इस्लाम ने मना किया औरत को मशवरे का इख्तियार दिया है हक दिया है लेकिन मर्द इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे पता हो कि बीवी जो कुछ कह रही है किस असर के तहत कह रही है उसकी तबीयत नरमी की है उसका मिजाज है उसके खानदान के असरात हैं कि किसी ने पढ़ा दिया जो आदमी इतनी बातों को अलग अलग करके सोच सके ना उसको समझना चाहिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुदैबिया में मुआहदा हो गया सहाबा रजी अल्लाह अन्हु बड़े मायूस बैठे थे कि क्या करें अब वापस जाएंगे मदीना मुनव्वरा यहाँ मक्का में हम लड़े क्यों नहीं ये क्यों नहीं किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर लिया सब मायूस बैठे हुए सर झुकाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए गुस्से में खैमे में और आपने फरमाया मैं इन सबसे कह रहा हूँ कि उसको एहराम खोलो और कुर्बानी करो ये लोग क्यों नहीं मेरी बात सुन उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा उनका आप इस्तेमाल फरमाएं जाएं आराम खोल के और अपनी कुर्बानी जबा कर दें और फिर देखें क्या होता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशवरे में क्या आराम खोल के जब बा गए और जानवर जिता कर जब जबा किया तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हु इतना दौड़े अपने जानवरों की तरफ एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु कहते लगता था कि उसे को कत्ल करने चलेंगे मशवरा था ना सही कारगर साबित हुआ तो मशवरा औरत का मानता ही है आदमी लेकिन हुक्मरानी मुमलिकत उन चीजों में एक अच्छे पहलू की पूरे पहलू की दोनों आपके सामने रख रहा हूं तो हुआ क्या वहां पे हंसे वो अब्दुल्लाह इब्ने हंजला रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए बगावत हो गई और अहले मदीना ने इनको घेर लिया अब इन्होंने खत लिखा यजीद को यजीद ने फौज भेज दी अब यजीद का कोई मानने को तैयार नहीं था आप उसने मुस्लिम ने हुआ हो उसके कहा तुम जाओ और इन्हें अहले मदीना को वो सबक सिखाओ कि हमेशा के लिए याद रखे कि बगावत कैसे होती है और ये एक मजा आ गया एक तो मुख्तलिफ रवायातें ये दीनार से हर फौजी को दिए और उसके बाद तीन दिन तक अहले मदीना को बुलाना और तीन दिन के बाद फिर कत्लेआम की तुम्हें इजाजत है वो पहुंचा मुस्लिम ने उकबा तो मरवान और अब्दुल मलिक के लोग बाहर और मदीना मुनव्वरा में दाखिले का मौका नहीं मिल रहा था अहले मदीना ने खंदक खोद दी अब्दुल्लाह इब्ने हंजला रजी अल्लाह अन्हु के कहने के खंदक कोई पार नहीं कर सकते थे तो अब्दुल मलिक ने जाके कहा कि तुम प्लान जगह से जाओ और हजरा के मुकाम पर आओ और वहां पर इस तरह से होता है हमला करना शाम के वक्त में क्योंकि सूरज इतना तेज वहां पड़ता है कि सामने की फौज की नजरें उससे चकाचौंध हो जाएंगी और तुम्हारा हमला कामयाब हो सकता है मुस्लिम ने उकबा पहुंचा तीन दिन तक कहने मदीना से कहा कि बगावत खत्म कर दो उन्होंने कहा हर चीज कतल नहीं करेंगे हम यजीद की हुकूमत ही नहीं चाहते फिर हमसे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु जिंदा थे मदीना मुनव्वरा में ये गालिबन आखिरी सहाबी हैं रजी अल्लाह अन्हु जिनके इंतकाल हुए हैं बड़ी शख्सियत थी इतनी बड़ी शख्सियत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मतलब ये सब कर रहे थे और ये कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात में इशा के बाद सफर शुरू किया और फजर के करीब मदीना मुनव्वरा पहुंचे और उस एक रात में 25 या 27 मरतबा मेरे लिए ये दुआ मांगी कि अल्लाह जावर को बख्श दे अल्लाह जावर कायम हो जावर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु इतनी बड़ी शक्ति थे वो भी उठ चुके उन्होंने कहा हम नहीं करते हैं हुकूमत के खिलाफ इनको पता था कि जो कुछ करबला में हो चुका है ना ये वाक्य अब भी कहीं बेचा गया ये सब लोग एक तरफ हो गए और अहले मदीना ने लड़ना शुरू किया और फिर लड़ाई में अहले मदीना को शिकस्त हुई और फिर मुस्लिम इब्ने उकबा जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ है तो फिर तो उसने पूरे जुल्म की इंतहा कर दी इसीलिए मौके की इनको आप देखेंगे वो मुस्लिम इब्ने उकबा की जगह मुस्तलिक इब्ने उकबा थे मुस्लिम का मतलब तो मुसलमान था मुस्लिम का मतलब जो हद नहीं बढ़ जाए उस ने हद कर दी उसने कहा हजरत नबी से निकालो या घोड़े पर کہتے ہیں کل اہل مدینہ کے مال عورتیں اور جائدادیں تمہاری جائز ہیں فوج والوں جو جاؤ پھر قتل ہونا شروع ہوئے اور اقابر صحابہ رضی اللہ عنہم قتل ہو گئے 600 سے زائد تابعین سے ایک دن میں انہوں نے مار ڈالے سید ابن مسیب رحمۃ اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تو سید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے وہ کسی نے کہہ دیا کہ اس سے پوچھا کر تمہارا جو میڈیا کے اندر کیا خیال ہے انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالم حکمرانوں پہ وہ قتل کرنے لگا کسی نے روکے اس کا یہ پاگل ہے دیوانے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا چھوڑو پاگلوں کو کیا مارتا ہے اس طرح جا کر دی جان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بلا لیا اور اسے اس نے کہا اچھا میرے ساتھ چالیس تک کھیلتے ہو چالیس چلتے ہو شام والے آ جائیں تو تم کہتے ہو میں امیر المومنین کا بیٹا اور ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے تو تم کہتے ہو بالکل ٹھیک کیا ہے تم جیسے منافقوں کی سزا ہے معاذ اللہ اور قتل کر دیا پھر اس کے بعد عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے 8 بیٹے ان کے سامنے شہید کر ایک بیٹا کسی کا جوان مر جائے عقل آ جاتی ہے وفات تک اس غم کو نہیں بلا سکتا ایسا شدید دام ہوتا ہے ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے عمر بھر کے لیے بندہ غائب کرتا ہے کیسے لوگ ہوتے تھے 8 بیٹے ان کے شہید ہو گئے اور پھر آپ کو انہیں بھی شہید کر دیا گیا پھر اب سے جاگر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ساری آئی چھوڑ دیا زین العابدین کو لے کر آئے مروان اور عبد الملک دونوں اور زین العابدین رحمت اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ کربلا دیکھ چکے تھے نا اتنے گھبرائے ہوئے تھے اتنا خوف تھا ان پہ کہ وہ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں آ کر آئے مسلم بن عقبہ کے سامنے اس نے دیکھا اس نے کہا اچھا تم وہی ہو جو کربلا میں بھی آئے تو وہی نہ کر تم وہی کسی خاندان سے تو انہوں نے کہا پانی پلا تو کہنے لگا پانی پی کے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قتل سے امان مل جائے اور میں تمہیں جانتا ہوں تم کیا سمجھ ہو اندر پانی مروان نے مانگ لیا اس کا اچھا مجھے پانی دے دو تو مروان کو اپنا بندہ تھا پانی اس کو بڑا دیا پھر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ کو دے دیا تو زین العابدین رحمۃ اللہ کو کہہ دے تو ڈانٹتا رہا اس کا پانی پی تو تاریخ میں آتا ہے زین العابدین رحمۃ اللہ کے ہاتھ کانپتے رہے نہ بھڑک سکتے تھے پانی نہ پی سکتے پھر مروان نے تو تجدید لائی کے ساتھ زیادہ آپ نے پھر مسلم نے کہا کہ جب چلنے لگا تھا تو اس نے کہا دیکھو حسین کی اولاد کو کچھ نہ کہنا ہو گیا کربلا میں اب ان لوگوں کو کچھ نہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد کو کچھ نہ کہنا یہ رپورٹ میرے پاس آئی ہے یہ ہمارے خلاف بغاوت نہیں کر رہے اس لیے انہیں کچھ نہ کہنا اس دن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ یہ سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کیا کیا انہوں نے جب مدینہ منورہ میں یہ قتل اور خون دیکھا تو اعتراض نہیں کرے ایک فوجی وہاں پہنچ گئے اور سعید ابن مسیب سعید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تم کون ہو کیسے آئے جس کے ساتھ ان کا میں مدینہ کے ساتھ اس کا کہتے تمہارا قتل ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تلوار توڑ دی ہے باقی جو قتل تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا تھا کہ جب قتل شروع ہو جائے نا تو سعید اپنی تلوار پتھر پہ رکھ کے توڑ دینا اور جو تمہیں قتل کرنے آئے اس سے کہنا کہ میں آدم کا دوسرا بیٹا بن جاؤں شہید ہو جاؤں زیادہ اچھا ہے بجائے اس کی پہلا بیٹا ہوں تو فوجی کی دماغ میں آدم کا اس نے کہا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کون ہے ان کا میں بھی صحیح کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے نظام سے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ شاہد ہو یہ بھی ہوا جو اس کے ہوا 3 دن کے بعد جا کر کہیں امن ہوا ہے اور لگنا 3 دن میں جو آدمی ملا ہے قتل ہو گیا اور کتابہ جو چھوٹا ہے وہ لگے ہم کہتے ہیں یہ کتنا تھا اس کو کہتے ہیں واقعہ حرہ حرہ اصل میں کہتے ہیں ان پتھروں کو جو جل گئے صدیوں سے قدیم پتھر مدینہ منورہ کے باہر کے دھوپ ان پہ پڑتی تھی اور وہ سیاہ پتھر ہو گئے تھے حربۂ واقع جسے کہتے ہیں سیاہ پتھروں والی جنگ وہ سیاہ پتھر جو تھے اس پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ مدینہ باہر جا کے لڑے تھے پھر سندر کو بھی اونٹ کے پیچھے چلے گئے تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نا جو چیز اترتی ہوئی جتنا وہ یہ خون تھا وہ یہ چیزیں تھیں لیکن آپ نے عالمی مثال میں دیکھی ہیں یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آدمی مثال میں خواب میں دیکھتا ہے مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ آسمان سے خون نازل ہو رہا ہے وہ خون موت ہے بظاہر تو اسی شکل میں دکھایا جاتا ہے تو خون ہے لیکن خون کی تعبیر کیا ہے وہ خون کی تعبیر موت ہے ایک آدمی دیکھتا ہے مجھے پانی مل گیا ہے بہت زیادہ کہ چشمہ کوئی ایسی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ خواب دیکھا گیا عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ابن عفان نے تو آپ نے اس کی تعبیر دی آپ نے فرمایا یہ جو پانی کا چشمہ تم نے دیکھا ہے عثمان کے پاس ہیں
तो ये उनके नेक अमल हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिखाए। पानी बाद वक्त वो माल से इसकी ताबीर दी जाती है। एक आदमी देखते हैं मुझे बहुत ज्यादा पानी मिल गया, चलो उसे बहुत ज्यादा माल और पैसा मिल जाएगा, ऐसी चीजों से ताबीर दी जाती है। हजरत हसन रजी अल्लाह ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह की शहादत के बाद ख्वाब देखा, आया कई जगह तारीख में। हजरत अली रजी अल्लाह ने बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, उनका वारिस ने आज रात ख्वाब में देखा है। अभी मोमिन सैयदना उस्मान रजी अल्लाह और उस्मान रजी अल्लाह ने अमीर मोमिनीन ने अपना हाथ अपना सर अपने हाथ पे रखा हुआ था जी, और अल्लाह के सामने ले गए और अल्लाह ताला से अर्ज किया कि अल्लाह इस उम्मत से पूछ मुझे क्यों बदल दिया, तेरा क्या हुक्म। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि दो खून के बदनाले आसमान से जमीन की तरफ चले हैं और शर शर खून बह रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह के दोस्त की तरह ऐसे समझ गए इसका, उनका आप देखते हैं कसल क्या कह रहा है, उनका जो देखा है वही कह रहा है। इसीलिए मदीना मुनव्वरा में जब अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु को लोगों ने बुलाया और ये कत्ले आम शुरू हुआ, तो उसने अमान दी हजरत ज़ैन अल-आबिदीन हुसैन रजी अल्लाह के खानदान को, इन्हें नहीं छेड़ना, फलां को नहीं तंग करना, फलां को नहीं करना, अल-उमर रजी अल्लाह के खानदान को नहीं छेड़ना। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु बाहर निकले ताकि देखें मदीना मुनव्वरा में क्या हो रहा है, तो उन्होंने बार बार एक फिक्रा कहा, उन्होंने कहा कि ये उस्मान का खून है, उस्मान का खून। मतलब ये कहा कि जो कुछ उस्मान रजी अल्लाह के साथ मदीना मुनव्वरा में हुआ और हम लोगों ने कुछ कोताही की, उनकी हिफाजत नहीं कर सके, अब ये उसका बदला देना पड़ रहा है मदीना मुनव्वरा में इस्लाम को। इशादा रहमतुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों को बरसते हुए देख रहे थे, ये असल में आलमी मिसाल था इसको साबित कर।